ब्रिडिंग केंटकी मुझे हेनरी ब्रैनम को गाड़ने की अंतिम संस्कार की सभा के लिए वहां 2 बजे तक पहुंचना है, जो मेरा चचेरा भाई है, उनकी पत्नी गुजर गई है और उनकी अंतिम विनती थी कि मैं उनका अंतिम संस्कार करूं और ब्रिडिंग केंटकी में, जो लगभग 150-160 मील दूर है, मैं सोचता हूं यह कुछ इसी तरह से है जो दक्षिण की ओर है और थोड़ा जल्दी छोड़ना होगा क्योंकि मुझे वहां पर जाना है। और फिर हमें तब आज रात वापस आकर और कल दोपहर को जाना होगा। मुझे अगले हफ्ते तुलसा ओलका होना जाना था, लेकिन मैं तुलसा मंगलवार से पहले नहीं जा पाऊंगा। और फिर हम शनिवार रात वापस आएंगे, मैं शनिवार रात तक आ जाऊंगा। और फिर अगले रविवार सुबह लगभग 3 बजे हम पश्चिम के लिए चले जाएंगे और फिर हम यह होने तक वापस नहीं आएंगे। मैं वापस आकर और मेरे परिवार और उन बातों को लूंगा और वापस आएंगे, प्रभु ने चाहा कभी तो ये होगा। और मैं निश्चय ही कलीसिया से कहना चाहता हूँ मेरे लिए प्रार्थना करना, और चाहता था जाकर देखूं यदि मैं जा सकता हूं तो। आइए देखें यह प्रभु भोज की रात होगी कि नहीं होगी। क्या होगी? नहीं, मैं पिछले रात प्रभु भोज की रात को यहां पर था लेकिन वापस नहीं गया। मैं इस बार प्रभु भोज के लिए यहां पर समय नहीं रहूंगा। क्या अगले रविवार रात को प्रभु भोज होगा? मैं हमेशा ही इसे आगे रखता हूं, समझे? हमेशा ही जब आप इसे खाते और पीते हैं, आप ये प्रभु की मृत्यु को दिखाते हैं जब तक वो फिर से नहीं आता है। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा है। बहन एडिथ राइट के एक दिन और छोटी हो गई है और बहन वहाँ बहन के घर में अगले शुक्रवार रात को एक छोटी संगति होने जा रही है, तो ये कितना अच्छा है। तो ठीक है, क्या यह सार्वजनिक आमंत्रण है? सबको बहन एडिथ के जन्मदिन पर सार्वजनिक आमंत्रण है। बहन लगभग 18 की होंगी, क्या यह सही है बहन एडिथ? इसी तरह से एक दिन मैंने कहा था, आप जानते हैं मैंने अभी अभी 25 वर्ष पूरे किए हैं, और एक व्यक्ति ने यहाँ वहाँ देखा और कहा हाँ, और मैंने कहा मेरी दूसरी बार 25 है। कब? 39 की होंगी। ओह, ये ऐसा संभव दिखाई नहीं देता है। क्या देता है? 39। मैं उसे हमेशा ही एक छोटी लड़की की जैसे ही बताता हूँ, आप जानते हैं, क्योंकि मैंने जब पहली बार एडिथ को जाना, मैं सोचता हूँ एडिथ आओ देखें, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं अंदाजा लगाता हूँ लगभग अब से 20 साल, मैं अंदाजा लगाता हूँ 25 साल पहले, हो सकता है 28 साल। आप देखते हैं मैं 21 सालों से प्रचार करते आ रहा हूँ, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं अंदाजा लगा सकता हूँ मेरे प्रचार आरंभ करने के ठीक बाद, तुरंत बाद ही मैं आपको जानता हूँ जो राइट परिवार है। तो इसलिए मैं धन्यवादित हूँ कि मैं उन लोगों को जानता हूँ, वे निश्चय ही मेरे जीवन में प्रेरणा रहे हैं। और यदि राइट परिवार अनंत काल में चला जाता है और मैं तब भी जीवित रहता था, मैं अपनी टोपी को बिना उतारे नहीं गुजर सकता हूँ उन महान बातों को याद करके जो परमेश्वर ने वहाँ उन पहाड़ियों पर की है। ओह प्रभु, यही है जहाँ पर ओह हर एक बात ने वहाँ पर जगह ली थी, और मैंने वहाँ पर देखा है जिन बातों ने जगह ली थी, परमेश्वर के दूत ने जॉर्ज कॉर्टर के लिए मुलाकात की, इस बात से वहाँ जगह ली जहाँ उसने मुझे पहाड़ियों पर उस रात लबालब हानिकारक सामग्री के साथ अगुवाई की, और फिर उसने मुझसे दर्शन में भी वहाँ पर मुलाकात की और डॉगवुड पेड़ की झाड़ियों में से हाथ पैर के सहारे ले गया। ऐसे ही बहुत सारी बातों ने जगह ली थी। भाई राइट मृत्यु के समीप पड़े थे जब सारे डॉक्टर होकर चले गए थे और वहाँ पर उसकी कलीसिया के सदस्य उससे कह रहे थे, जाओ अपने दैविक चंगाई करने वाले को लेकर आओ। मैं पहाड़ी पर ऊपर बैठा हुआ 4 दिन से पुकार रहा था, उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने दर्शन से बातें की, कहा जाकर उससे कहो यहोवा यो कहता है, और उस व्यक्ति को गाड़ेगा जो उसका मजाक उड़ा रहा है, और उसने किया, ये ठीक बात है। और वो सारी बातें जो वहाँ पर थी, और फिर यही है जहाँ पर कलीसिया के इतिहास में पहली बार मैंने जहाँ पवित्र आत्मा को कभी आते हुए देखा था, जब उसने बोला वे गैलरियाँ अस्तित्व के अंदर आ गई। बेन हैटी राइट को जो भी वो दे दिया, जो कुछ भी वो मांगना चाहती थी, इसकी परवाह नहीं, वो जो कुछ भी हो, पैसा या जो कुछ भी हो, कहा ये ठीक अभी तुम्हारे पास होगा। उसने 2 लड़कों के प्राणों के लिए मांगा और परमेश्वर ने उन्हें इसे दे दिया, और ऐसी बहुत सारी बातें वहाँ पहाड़ी पर हुई। परमेश्वर उन्हें आशीष दे, यही मेरी प्रार्थना है। कहा गया छोटी शारन रोज वहाँ पर बीमार है, छोटी शारन रोज डॉल्टन, शारन रोज कहाँ पर है? क्या ये है? अभी बाहर गई है। ठीक है, हम आगे। क्या कहा? तो ठीक है, जो है आप जानते हैं, आइए आप उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करूंगा। जितना जल्दी मैं कर सकता हूं मैं करना चाहूंगा। मुझे वहां केंटकी में जाना होगा, और मैं यदि यह 150 मील पर है, मैं नहीं जानता यह ब्रीडिंग केंटकी है, मुझे इसका अंदाजा नहीं है कि यह कितना दूर है। आपको वहां बहुत दूर टर्न पाइक में जाना होता है, और फिर लगभग उतनी ही दूरी पर या फिर थोड़ा सा और आगे वहां से होकर नीचे भाई बिलर के स्थान से और उस शहर से होते हुए एक और शहर एक छोटे से गिरजे के लिए जिसे मेरे दादा ने बनाया था, एक छोटी सी मेथोडिस्ट कलीसिया जहां पर मैंने 25-30 साल पहले प्रचार किया था। और यह महिला वहीं से है जिसे गाड़ा जाना था, और वो एक नर्स थी, और वो अचानक ही मर गई, और उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं उसे गाड़ने की सभा में प्रचार करूं। और फिर मेरे कुछ लोग यहां पर आकर कहने लगे कि यदि मैं वहां जाकर उनके लिए ऐसे प्रचार करूं जो यहां पर बैठे हुए हैं, कह रहे थे यह उनकी आखिरी विनती थी। तो यह कठिन था, आप जानते हैं। मैंने उनसे कहा तो ठीक है, मैं वहां उस कलीसिया में जाकर और मैं वहां पर उस झुंड को देखना चाहता हूं, और मुझे फिर इसे भी लेना है, इसलिए मुझे कैसे भी इसे जल्दी से करना होगा। तो आप समझते हैं, अब जबकि वे आ रहे हैं मैं सोचता हूँ भाई डॉल्टन, ओह तो कोई बात नहीं, अभी हम कुछ मिनट तक रुकेंगे, आप छोटी जेनिस को यहाँ पर लेकर आए, और कोई भी आकर और प्रार्थना करवाना चाहता है ये अच्छी बात है। और हम जेनिस, तुम कैसी हो? ओह यहाँ यहाँ एक अच्छी महिला है, यहाँ पर आओ। इसका इतना सुंदर होने का कारण है ये मेरी बहन की लड़की है, और मैं यहाँ पर पीछे हटना चाहता हूँ जिससे कि जो मैं कहता हूँ लोग मुझे सुन सकते हैं। अब ये छोटी प्रिय, इसकी एक स्वस्थ माँ है और एक स्वस्थ पिता है, लेकिन इस बच्ची के साथ कुछ तो गलत हुआ है। ये नाजुक है, बहुत ही नाजुक है, और छोटी सी और दुबली सी लड़की है। जितनी वो मधुर हो सकती है वो है, निश्चय आप जानते हैं मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन हमेशा ही इस बच्ची के साथ गलत होता है। शैतान इस बच्ची को लेने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है परमेश्वर का हाथ इस बच्ची पर है, समझे। हम देखते हैं, जब आप शैतान को काम करते देखते हैं, बस देखो वहाँ कहीं पर कुछ तो हुआ है। अब वो कुछ दिनों से बीमार रह रही है, मैं बाहर वहाँ पर नहीं गया क्योंकि मैं नहीं जानता था, क्या पता वो ठीक है कि नहीं है, मुझे फ्लोरिडा और यहाँ वहाँ जाना था, और मैं लेकिन उसका बुखार बढ़ने लगा, क्या यह सही नहीं है बहन? उसे बहुत ही तेज बुखार आने लगता है, और लगभग 103 ये 5 डिग्री बुखार को दिखाता है। डॉक्टर नहीं जानते कि यह क्या है, वे सोचते हैं यह एक प्रकार का आमवाद का बुखार है, लेकिन यदि एक आमवाद का बुखार होता इससे हो सकता है हृदय की खतरनाक स्थिति होती जिससे उसके चाचा मर गए थे। लेकिन मैं यीशु मसीह के लिए इस छोटी बच्ची के जीवन को दावा करने जा रहा हूँ, समझे। और आप जानते हैं दाऊद, जैसे मैंने पहले एक बार यहाँ कहा था, दाऊद ने शाऊल से कहा, उसने कहा शाऊल उसे हथियार को देना चाहता था और गोलियत से उस दानों से लड़ने के लिए एक भाले को देना चाहता था। उसने कहा मैं उन चीजों के बारे में नहीं जानता हूँ, उसने कहा लेकिन मेरे पास एक गुलेल होने दो जिसे मैंने साबित किया है, आपने देखा। और उसने कहा एक सिंह आया और मेरे पिता की एक भेड़ को लेकर चला गया, और मैं उसके पीछे इस गुलेल के साथ गया और मैंने उसे पकड़ा और भेड़ को वापस लेकर आया। अब ये भी भेड़े हैं, मेमने और भेड़े, परमेश्वर की भेड़। आइए हम परमेश्वर की कलीसिया की नाई आज सुबह उसके पीछे जाएं ताकि उन्हें वापस लेकर आएं। अब डॉक्टर नहीं जानते बच्चे के साथ क्या करना है, और मैं सोचता हूँ भाई ईड की छोटी लड़की के लिए भी उसे एक प्रकार का अस्थमा की परिस्थिति है या कुछ तो उत्पन्न हुआ है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ने यह कहा, मैं तुम्हें राज्य की चाबियां देता हूँ, जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तुम धरती पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोला जाएगा। हम अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं, अब परमेश्वर हमें विश्वास दे कि हम अपने पूरे हृदय से भरोसा करें जब हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, मैंने यहाँ इस नन्हे से नाजुक बेबर परिवार के फूल को पकड़ा है जो प्यारी मधुर और नाजुक सी है, और चिकित्सक वे विश्वास योग्य हैं, वे कोशिश कर रहे हैं जो कुछ भी वे जानते हैं, किस तरह से ढूंढने की कोशिश करें कि इस बच्ची के साथ क्या मामला है, लेकिन वे इसे नहीं कर सकते हैं। और मैंने इसके हाथों को पकड़ा है और मैं विश्वास नहीं करता हूं कि इसे कुछ तो आमवाद का बुखार हो गया है। मैं विश्वास करता हूं यदि ऐसा होता था तो आप मुझे बताते थे। मैं सोचता हूँ कि यह शैतान है जो बच्ची के जीवन को सताने की कोशिश कर रहा है, और हम परमेश्वर के राज्य के लिए आज सुबह बच्ची को दावा कर रहे हैं।
Thou enemy of the human life, thou enemy of God Almighty.
तू जो मनुष्य के जीवन का शत्रु है, तू जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शत्रु है, मैं इस बच्ची की ओर से आकर इसे उससे बाहर निकालता हूँ। यीशु मसीह के नाम से तू इस बच्ची को छोड़ दे। हो सकता है कि तू डॉक्टर से बच निकल सकता है, लेकिन तू परमेश्वर से बचकर नहीं निकल सकता। ये विश्वास की प्रार्थना शून्य कर देती है यीशु मसीह के नाम से, जो तुझे इस बच्ची के शरीर में प्रहार करती है, और यह उस संबंधित स्थान पर प्रहार करेगा जहाँ कहीं भी तू छिपा है। तू सामने आ जाएगा और बाहर निकाला जाएगा, और बच्ची जिएगी और चंगी हो जाएगी, क्योंकि हम बच्ची को उसकी चंगाई के लिए यीशु मसीह के नाम में प्रस्तुत करते हैं। आमीन। डेलोरस, इसके बारे में मैं एक और बूंद भी चिंता नहीं करूंगा। वो अभी पूरी तरह से ठीक होने जा रही है, और यह ऐसा ही है। फिर हमारे पास यह नन्ही सी डेल्टन है। कैसी हो प्रिय? क्या ही छोटी प्यारी सी चीज है। ओह, तुम तो बहुत ही भारी हो। क्या है छोटी प्रिय? वास्तविक नन्ही नीली आंखों वाली लड़की और काले बालों के साथ एक सच्ची आयरनिस्ट जैसी दिखाई नहीं देगी। और वो जोर जोर से सांस ले रही है, और उसके छोटे से फेफड़े और सब कुछ आवाज करते हुए उसके गले में अस्थमा जैसा कुछ तो उत्पन्न हुआ है। ओ प्रभु, एक शेर और भालू अंदर आए, दाऊद ने कहा, और पिता के कुछ मेमनों को ले लिया, और वो उनके पीछे गया, और वो उस भालू और शेर पर जय पा सका था। और हम आज विश्वासियों के नहीं आते हैं जैसे दाऊद था, परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जिसने धरती और आकाश बनाया। यीशु मसीह के नाम से इस बच्ची के लिए आते हैं। और शैतान, तूने जो इस बच्ची को पीड़ा दी है, तुझे उसे छोड़ना ही होगा। हम तुझे आज्ञा देते हैं कि इस बच्ची को छोड़ दे, तो वो चंगी हो जाएगी। मैं तुझे डांटता हूँ शैतान, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पुरुषान के द्वारा आज्ञा देता हूँ, जिसने तुझ पर विजय पाई है और तुम्हारी सारी सामर्थ को नष्ट हो गई है, और तेरे पास कोई सामर्थ नहीं है। और मैं विश्वास के द्वारा तुझ पर विजय को लेता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसने हमें उस इस सुसमाचार के द्वारा अधिकार दिया है कि उसके नाम में हम तुझे निकालें। यह मसीह के द्वारा दी गई आज्ञा है, तुझे इसे छोड़ना होगा, क्योंकि हम तुझे आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम में इस बच्ची को छोड़ दे, और वो चंगी हो जाएगी। अब बेन नॉल्टन, तुम एक बूंद भी संदेह मत करना, तुम और चिंता मत करना। परमेश्वर ने ऐसा कहा है और ऐसा ही है। यह छोटी सी लड़की कौन है? ओह, उसकी आंख के ऊपर सूजन है। अब यह लगभग एक जवान महिला है। मैं नहीं जानता इसे उठा सकता हूँ कि नहीं, लेकिन यह बहुत ही सुंदर है। इसका नाम विल्सन है। लीला है, लीला, लीला विल्सन। क्या यह एक नन्ही सी सुंदर चीज नहीं है? इसके आंख के ऊपर कुछ तो सूजन है, तो यीशु इस सूजन को चंगा करता है। क्या वो नहीं करता? सूजन को मरना होगा, तो ठीक है। यह केवल एक छोटा सा ट्यूमर है, यह छूट गया है, अब इसकी कोई जड़ नहीं रही। आइए प्रार्थना करें। ओ प्रभु, हम इस नन्ही सी प्रिय को आपके पास लाते हैं प्रभु यीशु के नाम में, और इसे एक नादान बच्ची की नाई पकड़े हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, और शैतान ने इस दुष्ट काम को उसके साथ किया है, और उसकी आंख को बाहर निकाल दिया होता यदि वो कर सकता तो। लेकिन आप ही एक उसके लिए उससे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। हम तुझे यीशु मसीह के नाम के द्वारा आज्ञा देते हैं शैतान, जिसने तुझ पर विजय को पाया है, और तेरी सारी पीड़ाएं जो तूने लोगों को दी है, हम तुझे आज्ञा देते हैं परमेश्वर के द्वारा भेजे गए दूत से दी गई आज्ञा के द्वारा, कि तू इस बच्ची से निकल जा और वो चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम के जरिए से। आमीन। तुम्हें आशीष मिले नन्ही लीसा। मैं अब और संदेह नहीं करता, केवल विश्वास करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ठीक है बहन ब्रूस, अब आप यदि आप चाहते हैं तो, यह महिलाएं जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जॉयसी, क्या आप बस थोड़ा सा यहाँ नजदीक आएंगी, जिससे कि लोग यहाँ आ सके। भाई नेविल, क्या आप यहाँ पर आएंगे यदि आप चाहें तो, और इन्हें तेल से अभिषेक करें। बेटी के स्थान में, आपकी भांजी के स्थान पर, भांजी, बेटी और बहन, आपका कौन है? यह कथन लोगों को मालूम होना है। अवश्य हमारी बहन यहाँ पर विकलांग है, मैं यह देखता हूँ, यह गठिया रोग है, क्या सही है बहन? एक टूटा हुआ पुट्ठा और लकवा हुआ है, इस महिला को यहाँ सर के पीछे दबाव है, जैसे किसी का हाथ इसे दबा रहा हो। बहन ब्रूस को पैर पर चोट लगी है और उसे भी, वो अभी अस्पताल में है। क्या वो आप कहीं पर गिर गई थी या और कुछ है? ये हमारी यहाँ कलिसिया की एक बहन है जो स्वचलित स्टूडियो से गिर गई थी और वो असल में अस्पताल में है। क्या यह टूट गई है? ओह, वो नसे और लहूवाहिनी और इत्यादि। तब भी बहनें अपने कुछ कुछ प्रियजनों के लिए खड़ी हुई हैं और यहाँ तीन महिलाएं प्रियजनों के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जो अब हम यह जान जाएंगे जब हम प्रार्थना करेंगे। अब आइए हर एक जन अपने सरों को झुकाए। ओ प्रभु यीशु, इन विनतियों को ज्ञात किया गया है और बाइबल ने कहा है तुम्हारी विनतियाँ सभा के संतों को ज्ञात हो। यहाँ पर वे लोग हैं जो अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो वे गंभीर रूप से बीमार हैं, कुछ मानसिक रूप से बीमार हैं, जो इनकार कर रहे हैं कि जीवित परमेश्वर है और दूसरी परिस्थितियों में हैं। यहाँ पर हमारी बहन है जिसके पांव पर गंभीर रूप से मोच आई है, जो अभी यहाँ आज सुबह अस्पताल से निकल कर आई है। एक बहन जिसके सर के पीछे एक जोर का दबाव है और एक बहन को टूटा हुआ पुट्ठा और एक लकवा है। वे सब यहाँ है प्रभु, वे अपनी विनतियों को ला रहे हैं और परमेश्वर की वेदी के सामने खड़े हैं, उनके सर पर तेज में चमकते हुए अभिषेक के साथ, जो पवित्र आत्मा को प्रतिबिंब करता है। मैं ज्ञान के साधारण रूप से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जो यीशु मसीह और उसके वचन का है, और मैं उन हर एक के लिए मांगता हूँ। परमेश्वर, जैसे मैंने अपने हाथों को उन पर रखा है, होने पाए उनकी विनतियाँ उन्हें मिल जाएगी, इसे प्रदान करें। ओ परमेश्वर, यीशु के नाम में ये ऐसा होने पाए हमारी बहन ग्रेटी के लिए, यीशु के नाम में बहन ब्रूस के लिए भी ऐसा होने दीजिए प्रभु, उसकी विनती जो घुटनों और जोड़ों के लिए है, हमारी बहन के लिए जो उसके सर का पिछला भाग उस अवस्था में है, इसे होने दीजिए प्रभु। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में वो इससे छुटकारा पाए, होने पाए। शैतान अपने हाथों को उसके गर्दन के पीछे से हटा ले, इसे प्रदान करें। और हमारी बहन जो दोनों तरफ से लकवा ग्रस्त है, उसका टूटा पुट्ठा और उसे एक लकवा है प्रभु, उनमें से कुछ बहुत छोटे दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ बहुत बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आपके लिए बहुत बड़ा और छोटा नहीं है। आप उन सबके ऊपर परमेश्वर हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा उन्हें छुटकारा दे, उनमें से हर एक जन को प्रभु आपके एक सेवक की नाई संदेह की सामर्थ के लिए या कुछ भी परेशानी हो, मैं उन्हें उनके छुटकारे को प्रदान करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। होने पाए हर एक जन बिल्कुल वही पाए जो कुछ भी उन्होंने मांगा है, और जैसे ये कलीसिया आपके देह का हर एक व्यक्ति प्रार्थना में है, हम उन्हें यीशु के नाम में छुटकारा देते हैं। होने पाए आपकी महिमा के लिए, वे इसे अभी ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब इसे ग्रहण करें, हर एक इसे ग्रहण करें। जाओ अपनी चंगाई को और आशीषों को ले लो। अब हमारे मनों में कोई संदेह नहीं है। क्या है? एक संदेह नहीं है, परमेश्वर इसे करने जा रहा है। क्या हर एक जन इसे विश्वास करते हैं? परमेश्वर इसे करने जा रहा है। हर एक, वो कुछ भी अधूरा करके नहीं जाएगा, वो बिल्कुल वैसा ही करने जा रहा है जो हमने उससे करने के लिए मांगा है, क्योंकि वो बिना कुछ किए परमेश्वर नहीं होता। समझे, यदि हम संदेह न करें, वो हमारे लिए इसे करने के लिए महान है। अब किसी के लिए तो प्रार्थना करना न भूलना, जिसे सचमुच प्रार्थना की आवश्यकता है। आप सब जानते हैं वो कौन है, या मैं हूँ। हाँ, मैं ही वो हूँ जिसे प्रार्थना की आवश्यकता है। अब दरार में खड़ा हुआ हूँ और एक बहुत लंबी सभाओं की श्रृंखला के लिए जा रहा हूँ, कैलिफोर्निया से आते हुए ऑरेगन, वाशिंगटन, ओकलाहोमा के आसपास और विभिन्न स्थानों में लोग कनाडा और हर कहीं से आ रहे हैं, और मुझे अलग अलग मतों के सेवकों, अलग अलग धाराओं और शैतान की सामर्थ के सामने दरार में खड़ा होना होगा, और अंतिम समय निकट आ रहा है। और किसी ने तो एक दिन कहा, मेरे घर पर आइए। यह एक महिला थी जो जर्मनी से हवाई मार्ग से आई थी, और दूसरा व्यक्ति कहीं से तो आया था। कहा कि प्रभु ने उन्हें आने के लिए कहा है, और ऐसा और यह और वो और कुछ। और किसी ने तो रास्ते पर आकर कहा, तुम इन सबके बीच में कैसे खड़े रहते हो? देखा, मैंने कहा, ओह, यह तो उसका अनुग्रह है। आमीन। मुझे तभी हवाई जहाज पकड़ना था, सारी रात हवाई सफर करके कैलिफोर्निया या एरिजोना या फ्लोरिडा जाकर वापस तूफान में आना था। शैतान ने हमें नीचे गिराने की कोशिश की, आप जानते हैं, और परमेश्वर हमें अंदर लेकर आया। और फिर अगली सुबह, बीता हुआ कल, मुझे एक सेवक के पास तत्काल में बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया में जाना था, और यह बस मैं इसे नहीं कर पाया, ऐसा ही है। आप देखना, और किसी के लिए तो वहाँ पर जाना है, आप नहीं जानते वहाँ से कहाँ जाना है। आप समझते हैं, यह यहाँ पर एक है, यह एक है, यह एक है, यह एक है, यह एक है, आप मेरा मतलब समझ रहे हैं, और फिर किसके पास जाऊँ, और आप सबको नहीं देख सकते हैं, इसलिए आपको बस रुकना होता है और आपको अगुवाई महसूस होती है, फिर हम आगे चल जाते हैं। मैं हमारे पास्टर के लिए एक अच्छी प्रशंसा करना चाहूँगा। पिछली रात वो अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में, मैं भाई वुड और चार्ली और उनके लिए बताया, यह लगभग रात का समय था, एक महिला जो वहाँ पर पड़ी हुई मर रही थी, उनकी बहनें और वे वहाँ पर थे, और कुछ देर के लिए वो बेसुधी में थी, उसने उठकर और प्रभु यीशु को स्वीकार किया। मुझे अगुवाई महसूस हुई प्रभु यीशु के लिए कि वहाँ फ्लोरिडा में जाऊँ, जो एक पापी व्यक्ति था, और सारी रात के समय में और जो कुछ भी है आपातकालीन में, आपको बस एक सेवक का कुछ तो जानने के लिए अनुकरण करना होता है। और मैंने हमारे पास्टर से हॉस्पिटल में सबसे अच्छी टिप्पणी सुनी, जब वो वहाँ बाहर आए, वो किस तरह से लोगों को मिलते रहते हैं और बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं और अपने कार्य स्थल में विश्वास योग्य है। मैं इस छोटी से झुंड से एक प्रभु का सेवक होने के लिए सराहना करता हूँ, जो अपने कार्य स्थल पर विश्वास योग्य है। आप सराहना नहीं करते, आपको उसकी सराहना करना है, निश्चय आपको करना है, लेकिन हम इसी तरह से आपको एक परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवक के लिए और ज्यादा करना है। आप समझे, ज्यादा समय नहीं हुआ, किसी ने तो शौटंगा शहर में हमारी आखिरी सभा पर पूछा, भाई ब्रैनम आप इस तरह से कैसे करते रहते हैं। मैंने कहा, यहाँ पर जेन गोड, पेट टेलर और सारा झुंड, उनमें से जो लोग यहाँ पर हैं, उनके जैसे, जब मैं उन सभाओं में से एक में था, उनके सामने रहता था और वे उपास रखते हैं, और यहाँ तक वे खाते भी नहीं थे और मेरे लिए सब कुछ करते थे। यही है जो मुझे आगे ले जाता है, समझे, यही वो शक्ति है, प्रभु से सहायता मिलती है। भाई डॉल्टन, ओह, उनमें से बहुत से लोग दोस्त हैं जो उपवास और प्रार्थना करते हैं, भोजन और उन चीजों को नहीं लेते हैं और उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। अब यदि भाई जेन, वे सबसे पीछे हैं, रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हैं, अब मैं भाई नेविल थोड़ी देर के बाद सभा को जारी रखेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए कुछ बोलना चाहता हूं, और अब यदि संभव होता है तो मैं वापस आ सकता हूं शुक्रवार रात को एडिथ उस प्रिय की जन्मदिन की पार्टी पर। यदि मैं ओकलाहोमा से समय पर वापस आ सकता हूं तो मैं शुक्रवार रात को, समझे, वहां आऊंगा, यदि मुझसे संभव हो सकता है तो। और अब जब हम चले जाते हैं, आप सब हमारे लिए प्रार्थना करें, और जैसे इसे बाइबल ने कहा, प्रभु आपके और मेरे बीच देखता है, आप देखते हैं जबकि हम एक सहभागी हैं, और वो ही इसे करे और आपको सुरक्षित रखे और आशीष दे और हमें सुरक्षित रखे, ताकि जीने की पूरी कोशिश करे जो हम उसकी सेवा के लिए कर सकते हैं, जब तक हम फिर से नहीं मिलते हैं। और मैं आपकी प्रार्थनाओं पर निर्भर रहूंगा जब मैं बाहर अपने कार्यस्थल में शत्रु का सामना करता हूँ, इसलिए आप हमारे लिए प्रार्थना करना। आप जो हमारे सारे सेवकगण हैं, भाई होम्स और भाई बेलर और वे सारे जो यहाँ पर हैं, केवल मेरे लिए प्रार्थना करें, आप समझते हो। अब हम संत यूहन्ना चौथा अध्याय खोलना चाहते हैं, और मैं आज सुबह जिस विषय पर बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर ने चाहा तो जीवित परमेश्वर की अचूक सच्चाइयाँ। मैं 14वां पद से पढ़ना चाहता हूँ, साथ ही 23वां पद जो संत यूहन्ना के चौथे अध्याय से है। हम अब यीशु जो कुएं पर स्त्री के साथ बात कर रहा है, उस बातचीत की ओर जा रहे हैं। संत यूहन्ना उसका चौथा अध्याय, 14वां पद, साथ ही 23वां पद। परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर कभी प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से सनातन का सोता बन जाएगा। अब वो शब्द सनातन नहीं है, आप उस पर निशान को देखें। यदि उसमें, यदि आपके पास किंग्स जेम्स की बाइबल है तो उसमें असल में कहता है अनंत जीवन के लिए, और सनातन कुछ समय के लिए होता है, अनंत हमेशा के लिए होता है, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने के लिए इतनी दूर तक आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला कर ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू पांच पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है, यह तूने सच कहा है।
The woman said unto him, Sir, I perceive.
स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तू कहते हो कि वो जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है।
इन द डेज ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ व्हेन ही वाज़ हियर ऑन अर्थ वॉकिंग इन फ्लेश ही फाउंड द पीपल।
नाज़रेथ के यहूदियों के दिनों में जब वो इस धरती पर देह में चल रहा था, उसने उसके दिन में लोगों को पाया जो एक धर्म की खोज कर रहे थे, उसके लिए छुटकारे को लेकर आए। वे एक धर्म को चाहते थे जो उन्हें उनके सारे बुराई और उनके शत्रुओं से छुटकारा दे। और मसीहत ने हर एक चुनौती को लिया जो भी उन्होंने मांगा। मसीहत ने हर एक चीज को ले लिया जो भी उनकी जरूरत थी और जो भी उन्होंने मांगा। यह हर एक उनकी जरूरतों के लिए चुनौती है, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और इसी तरह से लगभग आज भी है। हम आज लोगों को देखते हैं जैसे यह पहले था, एक धर्म को पाना चाहते हैं जो उनके लिए कुछ तो करे, जो उनके लिए सच्चाई को लेकर आए। और वास्तविक सच्ची मसीहत उन हर एक चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं करते थे। वे बस इसे नहीं चाहते हैं। ये आज के लोगों का स्वभाव है। मैं फिर से जन्म पाई हुई कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे राष्ट्र और देश की बात कर रहा हूँ। वे इसे चाहते हुए दिखाई नहीं देते हैं। यदि आप कुछ भी चाहते हैं और ऐसे ही आराम से नहीं रहेंगे जब तक आपको यह मिल नहीं जाता है। यीशु ने बैतमस में कहा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। यदि वे भूखे और प्यासे हैं तो। लेकिन आज हम लोगों को कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी उन्हें सचमुच आवश्यकता है, और वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। वे बस इसे नहीं चाहते हैं। और लोगों का व्यवहार नहीं बदला है, और ठीक अब भी आज संसार की जो आवश्यकता है वो यीशु मसीह का धर्म है, उन बातों से छुटकारा पाने के लिए जिससे वे डरते हैं और आशंका में हैं, और जिनसे छुटकारा पाने की आवश्यकता है। उन दिनों में जब वो धरती पर था, एक कारण था कि वे क्यों नाज़रेथ के यीशु को ग्रहण नहीं कर सके और विश्वास नहीं कर सके और उन्हें छुटकारा नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके लिए यह बहुत ही असाधारण था। यह था, उसने उसके छुटकारे को लाया, परमेश्वर ने उनके लिए छुटकारा भेजा, और यह उनके लिए बहुत ही असाधारण था जिसे उन्होंने इसे स्वीकार नहीं करना चाहा, क्योंकि यह उस तरह से नहीं आया था जैसे वे हमेशा धर्म को स्वीकार करते आए थे। और यही एक मुख्य परिस्थिति है, वैसे ही आज भी बनी हुई है। इसे समांतर देखकर बहुत ही विचित्र सा लगता है। आज के लोग सोच रहे हैं, वो परमेश्वर कहाँ है जिसने समुद्र को खोल दिया? वो परमेश्वर कहाँ है जिसने कोड़ियों को चंगा किया? वो परमेश्वर कहाँ है जिसने कैदियों को आजाद किया? और अब भी यह ठीक सामने है और वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। क्यों? उनके पास यही कारण था। यह बिल्कुल विपरीत है, यह असाधारण है। उस दिन में यदि वे उन संस्थाओं या कुछ बनाई हुई बातों में से होकर उन्हें जाना होता था, कुछ रीति रिवाज या इत्यादि वे इसे खुशी से स्वीकार करते थे। लेकिन क्योंकि उसने इसे जिस तरीके से लाया, लोगों ने इसे इस रूप में स्वीकार नहीं किया जिस तरह से उसने लाया था। इसी तरह से आज भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। वे इसे चाहते हैं, लेकिन वे इसे उस स्तर पर स्वीकार नहीं करना चाहते जो परमेश्वर इसे लाता है, और केवल इसी तरीके से परमेश्वर इसे ला रहा है। और हम परमेश्वर को हमारी सोच के स्तर पर नीचे नहीं ला सकते हैं। हमें अपने आप को उसकी सोच के स्तर पर उठाना होगा और बुनियादों पर मिलना होगा जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है ताकि उससे मिले। समझे, वे छुटकारे को चाहते हैं। उन सबके पास उनके संस्थाओं के रीति रिवाज थे, और फारिसी और सादुसी और हेरोदियन और जो भी वे हैं, सारे विभिन्न धर्म की शिक्षा और संस्थाएं हैं, और हरेक जन हरेक के पास उसका अपना ही कुछ है। वो विश्वास नहीं करता है, कोई पुनरुत्थान नहीं है या दूत नहीं है या आत्मा नहीं है। एक दूसरा है जो दोनों में विश्वास करता है, पुनरुत्थान, दूत और आत्मा, और एक अलग ही तरीके का विश्वास है कि तुम्हें अपने हाथों को धोना है, और जिस तरीके से तुम करते हो वैसे ही यह आज है। अब यदि हम ऊपर आ सकते हैं, मसीह इस तरह की कुछ एक बातों पर आ सकता है, लोग इसे स्वीकार करना पसंद करेंगे। लेकिन जब वो अपने पुनरुत्थान की सामर्थ में आता है ताकि लोगों को जीवित बनाए और कार्य में हो और अपने आप व्यवहार करे और उनके लिए व्यवहार को बदले, उनके स्वभाव को बदले, उनके जीने के तरीके को बदले, वे इसके साथ कुछ लेना देना नहीं रखना चाहते। वे वैसे ही जीना चाहते हैं जैसे वे जीते हैं। वे उसी तरह के जीने में बने रहना चाहते हैं जिसमें वे हमेशा ही जीते आए हैं। लेकिन फिर वे बहुत ही धर्मी होते हैं जो एक कलीसिया को जाते हैं और एक सदस्य होते हैं जिसमें वे रविवार सुबह कलीसिया को जा सकते हैं या जो भी वह समय हो, और एक 15 मिनट का पास्टर का उपदेश हो जो उन्हें वहाँ से दूर लेकर जाए, एक प्रकार से अधूरी संतुष्टि जो उन्होंने अपने धर्म के लिए हफ्ते भर के लिए कर दिया है, इसे कर दिया, वापस जाएं और बाकी के हफ्ते में जो कुछ भी वे करना चाहें वे करें। अब परमेश्वर ने इस दिनों में प्रतिज्ञा की है वो क्या करने जा रहा है, और मैं किसी से भी पूछना चाहूंगा, कोई भी सेवक हो, कोई भी हो, एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने कलीसिया के लिए की है और जो उसने कहा वे करेंगे। लेकिन सच्ची कलीसिया है जो अभी इसे कर रही है, लेकिन वे इसे नहीं चाहते हैं, वे इसे नहीं चाहते हैं। यीशु ने परमेश्वर को मनुष्य जीवन में लेकर आया। परमेश्वर ने मनुष्य बनाए थे। जब यीशु ने जन्म लिया था, परमेश्वर मनुष्य बना जिससे वो मनुष्य से संगति कर सके और मनुष्य में हो। ताकि क्या एक उद्देश्य को पूरा करे, वो है मनुष्य के लिए लेकर आए कि परमेश्वर क्या है, एक कलीसिया क्या है, वो नहीं लेकिन परमेश्वर क्या है। यीशु आया कि वो मनुष्य के लिए परमेश्वर को प्रस्तुत करे, और मनुष्य ने इसे नहीं चाहा। आज पवित्र आत्मा उस रीति में आता है ताकि परमेश्वर को मनुष्य के लिए प्रस्तुत करे, लेकिन मनुष्य कलीसिया जाना चाहता है। यह उसके विचारों को डुबा देता है, वो इसे पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता है। और हमें यह सीखना जरूरी है कि परमेश्वर बौद्धिक धारणाओं से नहीं जाना जाता है, लेकिन परमेश्वर नए जन्म के द्वारा जाना जाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जाना जाता है, कोई और तरीके से नहीं जाना जाता। यीशु, बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि कोई भी मनुष्य यीशु को मसीह नहीं बुला सकता है, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। और यदि आपने कभी भी पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, आप नहीं जानते हैं कि वो मसीह है, क्योंकि केवल इसी तरीके से वो अपने आप को प्रकट करता है। आप नहीं बदलते हैं जब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं पाते हैं। बाइबल ऐसा कहता है। पतरस का बचाया जाना और पवित्रीकरण हुआ था, दोनों ही हुआ था। उसे अशुद्ध आत्मा को निकालने के लिए सामर्थ मिलती है और सुसमाचार को प्रचार करना। यीशु ने उससे साफ साफ कहा कि वो बदला नहीं है जब तक वो पवित्र आत्मा को नहीं पा लेता है, और उसने कहा तुम्हारे बदलने के बाद तुम अपने भाइयों को स्थिर करना। यह वो बजरेल की रात थी जब वो अब तक नहीं बदला था, और कोई भी मनुष्य वास्तव में नहीं बदलता है जब तक उसका परिवर्तन नहीं होता है और अपने आप के लिए नहीं मरता है। और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति का नियंत्रण नहीं ले लेता है, वे इसे नहीं करना चाहते हैं। अब पवित्र आत्मा खुद एक व्यक्ति में गलत व्यवहार नहीं करेगा और खुद दूसरे में दूसरा व्यवहार, यह हर एक व्यक्ति को अपने चरित्र के अंदर लेकर आएगा, समझे, क्योंकि यह आत्मा है जो आपकी अगुवाई करता है, यह आपको उसके स्वभाव का अधीनता में लाता है, आप इसे अपने स्वभाव के अधीन नहीं बनाते हैं, वो आपको उसके स्वभाव का अधीन बनाता है, और पवित्र आत्मा आपको इसे जीने और प्रेम करने को लगाता है। ओह, आपके लिए कितना मधुर होता है दुनिया की चीजों को छोड़ना जब पवित्र आत्मा अंदर आता है, किस तरह से आपको साफ करता है और आपको धोता है और आपके अंदर उसके पीछे चलने के लिए एक इच्छा को रखता है और प्यास को और एक भूख को रखता है, खुद को नहलाते हुए वो सच्चाइयों को लाता है। अब जब परमेश्वर ने मनुष्य को यहाँ स्थान पर रखा और प्रभु यीशु के दिनों में उसने मनुष्य को उसके सामर्थ्य के लिए एक सच्चे मार्ग का नक्शा दिया, एक मार्ग का नक्शा जो आपको कुछ तो बताता है, आपको बताता है आपको आगे किस ओर बढ़ना है यदि आप जाना चाहते हैं तो। जब हम कुछ दिनों में यहाँ से चले जाएंगे, मैंने इसे काफी हद तक पार कर लिया होगा, मेरी बूढ़ी पत्नी और मैं इसके लिए सोचकर अचंभित थे, पिछले कुछ सालों से आप जिक्र कर सकते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, मैं आपको कोई भी रास्ता बता सकता हूँ जो आपको इसे अगुवाई करेगा और आप 15 मिनट के समय में आप पहुँच जाएंगे यहाँ से कैलिफोर्निया तक। मैंने कुछ भी समय नहीं गवाया है, मैं नहीं जानता, कभी कभी तो बिल्कुल ठीक समय पर, समझे, मैं समय का हिसाब लगाता हूँ, मैं बस आगे और पीछे और ऊपर और नीचे और आगे और पीछे जाता हूँ जब तक आप इसे जान नहीं लेते हैं। इसी तरह से परमेश्वर हमसे चाहता है कि उसके वचन को जाने, हम इसे जानते हैं, हमने इसकी यात्रा की है, हमने इसे परखा है, हमने इसे जांचा है और आप जानते हैं ये आपको कहाँ अगुवाई करता है। अब उसके मार्ग का नक्शा बाइबल है, बाइबल वो मार्ग का नक्शा है जो अब आपको परमेश्वर की सामर्थ्य और अगुवाई करता है, विश्वास आपको सामर्थ्य और अगुवाई करता है, सामर्थ्य प्रतिज्ञा को उत्पन्न करता है, हमें सामर्थ्य की आवश्यकता है। अब कुछ दिनों पहले जब बहन वुड और मेरी पत्नी और मैं कमरे में बैठे हुए थे, बपतिस्मा पर बातें कर रहे थे, यहाँ बहुत से हमारे बहुमूल्य भाई हैं जिसके लिए हम परमेश्वर के बहुत ही आभारी हैं कि उसने पवित्र आत्मा दिया है, जैसे कि भाई विलार्ड कुलिंस वहाँ बैठे हुए हैं और मैं सोचता हूँ भाई हिकरसन और उनकी पत्नियाँ और भाई चार्ली कॉक्स और उनकी पत्नी और भाई माइक ईगन यहाँ पर पीछे और ओह कितने और भी हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है और हमारे मध्य एक बात करना आरंभ होता है। ओह होने पाए कि यह हमें एक ऐसे स्थान के लिए जागृत करे जिससे कि हम परमेश्वर की सच्चाइयों को ढूंढने, भूखा होने और खिंचाव की ओर लेकर जाएं। परमेश्वर एक सच्चाई है। अब हमें मार्ग का नक्शा किस ओर इशारा करता है उन्हें जानना चाहिए। यीशु ने कहा उन दिनों में जब वो धरती पर था, उसने कहा तुम ढोंगी हो, उसने कहा तुम आकाश को देखकर पहचान सकते हो कि ये लाल और गहरा है, कल मौसम बहुत खराब होगा और यदि यह सही है तुम आकाश को देखकर पहचान सकते हो लेकिन समय के चिन्हों को नहीं पहचान सकते हो, यदि तुम इसे जानते मेरे दिन को भी जान लेते। क्या बाइबल ने यह नहीं कहा कि ये बातें होंगी जब वो आएगा? क्या यशाया ने इसकी भविष्यवाणी नहीं की? क्या यर्मिया ने, यश्केल ने, सारे छोटे भविष्यवक्ताओं ने इसके लिए नहीं बोला? हर एक चीज जो मार्ग का नक्शा है, क्या ठीक उस एक मंजिल पर इशारा नहीं करती है? और जब वो आया, उन्होंने उनकी कलीसियाओं को संस्थागत कर दिया जब तक वे इसे देखने के लिए चूक नहीं गए कि वो किस लिए आया था, ताकि परमेश्वर को मनुष्य में लाए, ताकि परमेश्वर को मनुष्य में बनाए जिससे फिर से दोनों को एक साथ करे। यहाँ तक अय्यूब अपने कष्टों के दिनों में चिल्ला उठा, ओह यदि मैं केवल उसे देख सकता, दूसरे शब्दों में यदि मैं उसके घर जा पाता और उसके दरवाजे को खटखटाता, यदि मैं कोई एक को पा सकता जो मेरे लिए दरार में खड़ा हो सकता है। उसने कहा मैं जानता हूँ मैंने पाप नहीं किया है, लेकिन अब भी मैं जानता हूँ कि मैं धर्मी हूँ। मैं जानता हूँ मैंने कपट नहीं किया है, क्योंकि मैं प्रज्वलित बलि पर खड़ा हूँ। लेकिन उसके पास सच्चाइयों की कमी थी, उसके पास शिक्षा थी, लेकिन उसे सच्चाइयों की कमी थी। उसने कहा, ओ यदि मैं केवल एक को भी पा सकता जो अपने हाथों को एक पापी पर रख सकता है और एक पवित्र परमेश्वर जो उसके लिए सच्चाइयों को लाता है। जब वो एक नबी था और आत्मा में था, वो बैठा हुआ अपने फोड़ों को खदोड़ रहा था। प्रभु का आत्मा उस पर आया, बिजली चमकने लगी, गर्जनाई हुई और उसने चिल्लाया, मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंतिम दिनों में वो इस धरती पर खड़ा होगा। यदि मेरी खाल के कीड़े इस देह को नष्ट भी कर दें, फिर भी मेरी देह मैं परमेश्वर को देखूंगा। आप वहीं पर हैं, वो सच्चाई वो किसी दिन आएगा। वो क्यों नहीं, वे प्राचीन महान व्यक्ति जो वे पहले वहाँ पर थे, उन्होंने आगे आने वाली बातों को देखा और यीशु ने कहा, यदि तुम मुझे जानते तुम मेरे दिन को भी जानते। वो परमेश्वर और मनुष्य को एक साथ करने के लिए आया, वही केवल एक आया, एक दूत इसे नहीं कर सकता है, कोई भी इसे नहीं कर सकता है, लेकिन वही है, वो परमेश्वर और मनुष्य को एक करने के लिए आया। उसने कहा, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मैं तुम में और तुम मुझ में। वो परमेश्वर और मनुष्य को एक साथ करने के लिए आया है, जहाँ मनुष्य परमेश्वर के लिए एक साय करके बनाया गया था और खुद धरती का एक परमेश्वर बना। यह सही है, लेकिन उसके अपने मूल को गवा दिया पाप की वजह से, और बैल और बकरियों का लहू इस पाप की प्रायश्चितता नहीं कर सके, लेकिन यीशु मसीह का लहू इसे कर सका। ओह कैसे, देखना वो मार्ग के नक्शे को दिखाता है। उसने इसे साबित किया, मार्ग का नक्शा ठीक इसकी ओर अगुवाई की। ठीक, तुम मूसा को जानते तो मुझे भी जान जाते, यदि तुम वचन को जानते थे तो। जब शैतान उससे मिला, शैतान ने उसे घुमाने की कोशिश की, उसके पास मार्ग का नक्शा था। शैतान ने ऐसा किया और कहा, तुम देखो यहाँ पर है ये, यहाँ ऐसा कहता है। उसने कहा, लेकिन यहाँ ऐसा भी लिखा है। ओह वहाँ पर बहुत सारी बातें होकर गई, ये वो और भी, ओह जब तक मैं इसे करता हूँ, ये ऐसा नहीं है। आपको व्यक्तिगत ताल्लुकात और अनुभव से परमेश्वर को जानना है। यदि आप दावा करते हैं आपके पास यह है और अब भी आप दुनिया के लिए जीते हैं, फिर वहाँ कुछ तो गलत है। शैतान ने तुम्हें गलत वचन पर घुमा दिया है। यदि आप रास्ते के नक्शे का अनुकरण करते हैं, यदि ये कहता है यहाँ इस तरफ या उस तरफ महामार्ग की ओर मुड़ो, उस ओर मुड़ो, यदि प्रेरितों के काम 2:30 कहता है पश्चाताप करो और अपने पापों की प्रायश्चितता के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, या बाएं नहीं मुड़ता है तुम्हें उस ओर मुंडा ही होगा, मैं परवाह नहीं करता ये कैसा है, आपको मार्ग का अनुकरण करना होगा। यदि उसने कहा यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे बच्चों के लिए है, इसका मतलब बीते युग के लिए नहीं है, जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। यहाँ इसने क्या कहा, यह परमेश्वर का मार्ग का नक्शा है, हमें इसका अनुकरण करना ही है, वो मार्ग रेखाकृत है। आप कहते हैं मैं कैसे जानूंगा कि मैं उस मार्ग पर हूँ, वो प्रभु यीशु के लहूलुहान पद चिन्हों ने मार्ग को बनाया है और चेलों ने उसी पर उस बुनियाद को रखा है और पवित्र आत्मा ने उन्हें निर्देश किया है, उस मार्ग के नक्शे को अनुकरण करो। कुछ रात्रि पहले किसी ने कहा, भाई ब्रैनम अपने विवेक के अंदर तो सही है, लेकिन जब वो अपने शिक्षा पर आते हैं वो जी जान लगा देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो केवल ये जानेगा कि बाइबल उसी वचन को सिखाता है, नबी का मतलब होता है एक वचन का विभाजन करने वाला, उन चिन्हों को केवल एक बढ़ावा देना है। शिक्षक और इत्यादि वचन को सिखा सकते हैं, लेकिन जब तुम कुछ तो आते हुए देखते हो जो अलौकिक और दैविक है, इसी तरह से इससे यही साबित होता है, यही वो बात है, यही वो परमेश्वर का वचन है। नाजरत का यीशु जब यहाँ धरती पर था, लोगों ने बहुत बार मछली और रोटी और इत्यादि के लिए उसका अनुकरण किया और जो उन्हें उससे मिल सकता है, और उसने उन्हें आने दिया। उसकी प्रसिद्धि एक बार ऊपर आना आरंभ होने लगी, और फिर एक दिन लोगों के झुंड को एक साथ किया, 5,000 लोगों को खिलाने के बाद दरिया के उस किनारे पर गया, एक झुंड उसके पीछे इकट्ठा हुआ, उसके साथ आ गया, और उसने कहा तुम क्यों आए हो, चमत्कार के लिए नहीं, लेकिन उस मछलियों और रोटियों के कारण, इसी कारण से तुम आए हो। ओह उनमें से कुछ लोगों ने सोचा वे कुछ तो चूक गए हैं। आप जानते हैं यदि वे जाकर नहीं देखते कि उसने क्या किया है, लेकिन क्या इसे छुआ है, नहीं श्रीमान। फिर यीशु ने उसी योना के छठवें अध्याय में सुसमाचार को डालना आरंभ करता है और वे उस पर अचंभित हो गए और उस समय से उसकी प्रसिद्धि गिरने लगी, नीचे आने लगी। तब वो वैसा नहीं था। और एक आधुनिक प्रचारक या किसी के भी जैसे यदि वो कहते हैं, क्यों एक मिनट यहाँ रुको, तुम लोगों को अपने प्रचार में अचंभित कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब एक आधुनिक प्रचारक कहेगा, ओह हाँ, हो सकता है मुझे अच्छी तरह से देखना था कि वो संस्था क्या कहती है, समझे। हो सकता है मेरे लिए अच्छा होता कि देखूं कलीसिया इसके बारे में क्या कहती है, क्योंकि शायद वे मुझे बाहर निकाल दें। वो हमारा परमेश्वर नहीं था। हमारे प्रभु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया था। उसने वचन का पालन किया और कोई भी परमेश्वर के साथ उसमें है इसी तरह से अनुकरण करेगा। क्या वो रुका? नहीं श्रीमान। जबकि उसकी प्रसिद्धि हर समय घटने लगी थी, बहुत से लोग उसके साथ और नहीं चले, वे उससे दूर हो गए थे। फिर अगले अध्याय में कुछ और मुड़ गए और अगला अध्याय कुछ और मुड़ गए। वो कहाँ पर था? कलवरी के रास्ते पर। लेकिन क्या वो कभी रुका? नहीं श्रीमान। उसने कभी भी परमेश्वर के वचन को लेकर समझौता नहीं किया। उसे सीधे महामार्ग की ओर अगुवाई मिली। वो मार्ग के नक्शे पर था, वो उसके सामने एक मार्ग था, उस मार्ग पर उसे चलना ही है। हर एक फिर से जन्म पाए हुए के सामने एक रास्ता रखा हुआ होता है, आपको उस मार्ग का अनुकरण करना है। परमेश्वर ने इसे निशान लगाया है, इसे लहू के द्वारा निशान लगाया गया है। और आत्मा हमेशा ही लहू में रहता है, क्योंकि लहू में से होकर ही जीवन आता है। लहू का जीवाणु जीवन का जीवाणु है। अब हमें उसका अनुकरण करना है और हम देखते हैं कैसे मार्ग का नक्शा हमारा निर्देशित करता है, दिखाता है कि हम कौन से रास्ते में जा रहे हैं। यह हमेशा ही ऐसा रहा है। यह हमारे लिए ठहराया गया मार्ग है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए ठहराया हुआ मार्ग है। जब एक मनुष्य एक स्थान पर आता है जहां वो वचनों को देखता है और प्रसिद्धि के कारण, कुछ कलीसिया के सताव के कारण, उसके लोगों के कारण जो उसे इसे प्रचार करने की अनुमति नहीं देते, वो मनुष्य कभी परमेश्वर के साथ नहीं होगा। तुम्हें वापस आकर और वचन को लेना होगा। परवाह नहीं कि यह क्या है, यदि आप नहीं करते आप बाहर हो जाते हैं, आप कहीं तो घूमते रहते हैं और पाप के दलदल में डूब जाएंगे। मैं किसी भी व्यक्ति को चुनौती देता हूँ और मेरे वाचनालय में वहाँ हमारे पास बहुत सारे प्राचीन इतिहास है जिसे मैं जानता हूँ। वो है पूर्व निशियन पिता, वो बहुत ही प्राचीन जोसेफस की लिखाई, हिस्लोप की, दो बाबुल, पॉस की, शहीदों की किताब, बहुत ही और भी प्राचीन लिखी हुई किताबें हैं। और कभी भी कोई ऐसा समय नहीं हुआ है कि एक कलीसिया खुद को एक स्थान पर लाए जहां यह इसके संस्थागत पर रुक गया हो और परमेश्वर ने कभी इसे ऊपर उठाया हो। वो ठीक वहां पर उस दलदल के अंदर डूब गई। यह सही है, वो कभी भी आत्मिक में बढ़ती नहीं गई, कभी नहीं, और वो कभी नहीं जाएगी। यह परमेश्वर की योजना में नहीं है। परमेश्वर की योजना पवित्र आत्मा है। यह परमेश्वर के कामों को करने का ठहरा हुआ मार्ग है। अब इसे ध्यान देना, नूआ के दिनों में परमेश्वर की योजना हमेशा ही कष्टदायक होती है, इसी कारण लोग इसे नहीं चाहते हैं। नूह के दिनों में उनके पास धर्म था, उनके पास यह 2000 वर्षों से था, जैसे हमारे पास मसीहत थी, और वहाँ निंदक थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब है। और नूह के दिनों में क्या हुआ? हम देखते हैं कि नूह उस जहाज के दरवाजे पर खड़ा था और एक जहाज को बनाया जो किसी भी इंसानी सोच के विपरीत था। कभी भी बारिश नहीं हुई थी, कभी आकाश पर एक बादल नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने कहा बारिश होने जा रही है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने कहा एक जहाज को बनाओ, और नूह ने जहाज को बनाया और उसे दरवाजे पर खड़े होकर और उद्धार को प्रचार किया, और केवल यही वो उद्धार का उपाय है। क्या ही वो आज का एक नमूना है। वहाँ एक द्वार है जो परमेश्वर की ओर अगुवाई करता है, और वो द्वार मसीह है। मसीह वो पवित्र आत्मा है जो हम में रहता है, और हम परमेश्वर के जहाज के दरवाजे पर खड़े हुए हैं उस पवित्र आत्मा के और प्रचार कर रहे हैं। यह वो मार्ग है, यही छायाचित्र है जिस पर वे बाकी के लोग चलते आए हैं। नूह परमेश्वर का ठहरा हुआ एक मार्ग था। मिस्र से बाहर छुटकारा पाने के दिनों में मूसा परमेश्वर का मार्ग था। देखा, एक अलौकिक सेवकाई, एक मार्ग। देखना, नूह के पास कुछ तो अलग था। नूह के पास कुछ धर्म था जो बाकी उन लोगों से अलग था। उसके पास परमेश्वर का वचन था, और लोग परमेश्वर के वचन के आदि नहीं थे। उनके पास उनके संप्रदाय थे, उनके पास वो था जो उन्होंने चाहा था। इसलिए ये उनकी संस्थाओं को सुन रहे थे और वचन को नहीं, लेकिन नूह के पास वचन था, मूसा के पास वचन था। कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी लोगों के पास क्या था, मूसा के पास यहोवा यो कहता वाला वचन था। देखो इससे क्या साबित हुआ, उसने चिन्ह और चमत्कार को किया। और हर एक चिन्ह और चमत्कार के पास एक आवाज थी। अब परमेश्वर ने कहा, यदि वे पहले चिन्ह की आवाज को नहीं सुनते हैं, वे दूसरे चिन्ह की आवाज को सुनेंगे। अब आज के लोग वे यीशु के दिनों के जैसे ही हैं, वे चमत्कारों के पीछे चलते हैं। ओ, वो हो सकता है कुछ तो ऐसा करे जो थोड़ा सा अलग हो, मैंने इसे होते देखा है। आओ देखें, यदि वो इसे परख सकता है तो, आओ देखें यदि वो इसे कर सकता है तो। आप देखते हैं वो इसी तरह से करता है। उन्होंने केवल रोटी और मछली के लिए ही उसका अनुकरण किया, लेकिन जब यह पश्चाताप और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा के लिए बात आती है, पवित्र आत्मा को पाने की बात आती है, वे अपनी उस पर उंगली को नहीं रखते हैं। यह सही है, और फिर वे तुम्हें दोषी ठहराते हैं। उन्होंने यीशु को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा तुम इसके विपरीत प्रचार करते हो। वे उसे नहीं रोक पाए, वो ठीक आगे बढ़ता गया। एक बड़े सेवक ने एक दिन मुझ पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ भाई ब्रैनम, कि तुम कभी इस कलीसिया के लोग जिस तरह से जी रहे हैं कुछ भी विरोध में नहीं कहोगे। उसने कहा, भाई ब्रैनम, तुम उन्हें ऐसा बना रहे हो कि वे तुम पर गुस्सा हो। मैंने कहा, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ जबकि मेरा प्राण और मेरी अंदरूनी आत्मा इसके विरोध में पुकार उठती है। उसने कहा, तो मैं इसके विरोध में कुछ नहीं कहता हूँ। मैंने कहा, तुम नहीं कह सकते हो, तुम्हारे पास लाखों डॉलर्स हैं, उसकी योजनाएं हैं, तुम्हारे उनके डॉलरों को लेना है। मेरे पास उसे लेने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे केवल जिस चीज की आवश्यकता है वो प्रभु के पुनरुत्थान की सामर्थ है, जिसकी सबको आवश्यकता है, वो आत्मा है, सच्चाई पर खड़ा होना है। मैं परवाह नहीं करता कितनी संस्थाएं इसके खिलाफ होती हैं, या फिर भी परमेश्वर का वचन ही है। धरती और आकाश चल जाएंगे पर मेरा वचन नहीं टलेगा। जो कोई भी इस किताब में जोड़ेगा और निकालेगा, उसी तरह से उसके लिए भी जीवन की किताब से निकाल दिया जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे नक्शा कहता है, ऐसा ही है परमेश्वर का मार्ग। मूसा के पास चिन्ह थे, उसने साबित किया कि वो परमेश्वर का सेवक है। परमेश्वर हमेशा ही मनुष्य के जरिए से काम करना पसंद करता है। यह परमेश्वर की योजना है कि मनुष्य के जरिए से काम को करे। क्या आप यह विश्वास करते हैं? परमेश्वर मनुष्य के जरिए से काम करता है। उसने मनुष्य को धरती पर उसका सहायक बनाया। उसने मनुष्य को अपने से थोड़ा कम परमेश्वर बनाया। अब हम हाल ही में उत्पत्ति 1:26 की शिक्षा में से होते हुए आए हैं, जब वो एल एला एलोहिम था, वो पूर्ण रूप से वो एक जो अस्तित्व में है, और उसमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के गुण थे। तीन परमेश्वर नहीं, तीन कार्य स्थान जो उसमें थे, जिसे उसे उन समय की परिपूर्णता में जीना था। वो एक उद्धारकर्ता था, वो एक राजा था, वो एक परमेश्वर था। यह सारी बातें उसे खुद प्रदर्शित करती हैं। यह परमेश्वर के गुण थे, देखो, लेकिन उसमें आदि में ये उसमें थे। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उसने उसे धरती पर थोड़ा कम एक परमेश्वर करके रखा। यीशु ने इसे जाहिर किया जब उसने कहा, क्या यह तुम्हारे नियम में नहीं लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर हो? और यदि वे उन्हें परमेश्वर करके कहते हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन आता है, जो कि नबी थे, भला तुम मुझ पर कैसे दोष लगा सकते हो जब मैं कहता हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? उसने कहा, समझे, वे इसे समझ नहीं सके थे, देखा। लेकिन मनुष्य को यहाँ धरती पर एक अधिकार के साथ रखा गया था। हर एक चीज उसके नियंत्रण में थी। जो आदम ने खोया, यीशु ने साबित किया कि उसने लौटाया था। उसने प्रकृति को रोका, उसने मुर्दों को जिलाया, उसने सब कुछ किया। और आज संसार कह रहा है, बाइबल ने कहा, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए, क्योंकि परमेश्वर उसके बच्चों को फिर से सच्चाई के अंदर लाता है, ताकि चीजों को वास्तविक बनाए। और यह लोगों के लिए रुकावट होता है। यदि शैतान सच्चाई को उनसे दूर नहीं रख सकता है, वो उनमें से कट्टरपंथियों को बनाता है। वो उन्हें इस तरफ और उस तरफ फेंकता है, और वे सब तरह की वस्तु को लेते हैं, लहू और तेल और सनसनी होना, जो कि वचन में है भी नहीं। लेकिन उस छाया चित्र में बने रहो, महामार्ग में बने रहो, वचन के साथ बने रहो, इसे मत छोड़ना। इसी तरह से यीशु आया कि मनुष्य भरमाया नहीं जाए और वहाँ से हट जाए, लेकिन ठीक वचन में बने रहे। उस महान संत पौलुस ने कहा, यदि स्वर्ग से दूत आकर और कोई सुसमाचार प्रचार करे, जो आपको प्रचार किया गया है, उसे तुम्हारे निमित्त शापित होने दो। हाँ श्रीमान, क्यों? शैतान अदन की वाटिका में एक प्रकाश के दूत की नाई नीचे उतर आया और हवा से कहा, क्योंकि उसने भी इनकार नहीं किया। उसने कहा, ओह तो यह सब ठीक है, ओह निश्चय ही परमेश्वर ने ये कहा है, लेकिन तुम्हारे पास और उजाला होगा। हमारे पास आज बहुत से हवा के उजाले और शैतान के उजाले हैं। उन बातों को देखते हैं, और बाइबल ने कहा, अंतिम दिनों में वो शैतान खुद को उजाले के दूत बनाएगा। और यह संस्था और संप्रदाय और सारी यह बेहूदी बातें होती जा रही हैं, जो इसमें से मुश्किल से ही आधी बातें वचन में है भी नहीं। यह सही है, महामार्ग में बने रहो, मार्ग के नक्शे में बने रहो। उस मार्ग पर जाओ जिसमें वे चले गए, वचन में जाओ जो उन्होंने प्रचार किया, इसे जियो। यह बताओ, मैं जानता हूँ यही वो सच्चाई होगी। अंतिम दिनों के चिन्ह है, परमेश्वर मनुष्य में रहता है, यही वो परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर के पास कोई तो होना है जिस पर वो भरोसा कर सकता है, कोई तो जिस पर वो यकीन कर सकता है और वो परमेश्वर में यकीन कर सकता है, जो उस पर विश्वास कर सकता है। आप विश्वास करते हैं क्या, नहीं करते? निश्चय परमेश्वर के पास कोई तो होना है जिस पर वो यकीन कर सकता है, और फिर जब वो एक ऐसे व्यक्ति को पा लेता है जिस पर वो अपने भरोसे को रख सकता है और अपने सामर्थ्य को, एक मनुष्य जो मार्ग का अनुकरण करेगा, जो ठीक लक्ष्य पर बना रहेगा, समझे, ठीक आगे जाएगा जब तक वो सामर्थ्य के स्थान पर नहीं आ जाता। विश्वास उसे उसकी ओर अगुवाई करेगा, क्योंकि उसके पास वचन में विश्वास है। ये उसे प्रतिज्ञा की ओर अगुवाई करेगा, और वो प्रतिज्ञा वो उसे सामर्थ्य की ओर अगुवाई करेगा, और वो सामर्थ्य उसे प्रतिज्ञा की ओर अगुवाई करेगी। और फिर जब उसे प्रतिज्ञा मिलती है और वो प्रकटीकरण में लाना आरंभ करता है, यह क्या करता है? यह अविश्वासियों को अंधा बना देता है। गुनगुने वे संस्थाओं की सेवा करने वाले भाई, यह बिल्कुल सही है। यही है जो उसने वहाँ पर किया। वहाँ पहले यीशु के दिनों में उसने कहा, यदि मैं नहीं आता तुम पाप को जानते भी नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ। आमीन। अब मैं यहाँ पर हूँ, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। और आज यदि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि अंतिम दिनों में वो पवित्र आत्मा को भेजेगा और ये बातें जगह लेंगी, आप इसे संदेह कर सकते हैं, लेकिन अब की वो आकर और इसे कर रहा है, सारे संसार के पास कोई बहाना नहीं है। ये सारे राष्ट्र के बाद राष्ट्र में गर्जना हुई है, एक स्थान के बाद दूसरे स्थान पर, जब तक ये सारी धरती पर फैल नहीं जाता, यह सही है। वे बिना बहाने के हैं, वे इसे नहीं जान पाते यदि परमेश्वर आकर और इसे नहीं लाता, लेकिन अब उसने इसे हमारे लिए लाया है। और फिर यह एक सच्चाइयां है, उस वचन का अनुकरण करने की सच्चाइयां, सत्य का अनुकरण, इसके साथ बने रहो। ओह, मैं वो बैप्टिस्ट कलीसिया पर जाता हूँ, वे कहते हैं हमारे पास सत्य है, मेथोडिस्ट कहते हैं हमारे पास सत्य है। अब सत्य किसके पास है? आप दोनों ही अलग हैं। किसके पास सत्य है? वहाँ सेवंथ डे एवेंजेलिस्ट के पास जाओ, हमारे पास सत्य है। चर्च ऑफ क्राइस्ट के पास जाओ, हमारे पास सत्य है। तो केवल एक ही तरीके से सत्य हो सकता है, वो है वचन के साथ बने रहो। कोई तो कहीं पर वचन से हटा है, उनके पास सत्य का कुछ भाग है, फिर वे जाकर और उसी पर चक्कर लगाते रहते हैं। वे महामार्ग पर हैं, जो पहुंचते हैं और घूमते रहते हैं। वचन के साथ बने रहो, उनके साथ यीशु मसीह के बपतिस्मे के बारे में बात करो, और इसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है। और उसने कहा, उसने लोगों को यीशु मसीह के नाम से फिर से बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी। उसने कहा, यदि दूत कुछ और आकर कहे और वो शापित होने दो, इससे फर्क पड़ता है। क्या होता यदि मूसा कहता, मैं अपने जूतों की बजाय टोपी उतारूंगा, मुझे जूते उतारने से कठिनाई होती है, मैं अपनी टोपी को उतारूंगा और आदर को दिखाऊंगा। परमेश्वर ने कहा जूते, और परमेश्वर चाहता है जूते, ना कि टोपी, जो उसने कहा है। परमेश्वर उसके हर एक वचन को शब्द दर शब्द पूरा होने की आज्ञा देता है, इसे होना ही है। तुम्हें वो वही करना है जो वो करने को कहता है, क्योंकि एक मात्रा या एक बिंदु भी इसमें से नहीं टलेगा। धरती और आकाश चल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा, इसे बने रहना है। एक एक मात्रा या थोड़ा भी इसमें से नहीं टलेगा, इन सबको पूरा होना होगा। और अब मनुष्य परमेश्वर की आधीनता में था, मनुष्य ही से परमेश्वर कार्य करवाता है। और फिर जब मनुष्य सत्य को पाता है, सही महामार्ग पर आ जाता है और आगे बढ़ना आरंभ करता है, और बढ़ते हुए इन सच्चाइयों को पाता है, यह क्या करता है? वो अविश्वास करने वाला भाई, वो उसकी ओर देखेगा, ये लगता है वो इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। यदि वो करता है, उसे उसकी कलीसिया को छोड़ना होगा। यदि वो उसकी कलीसिया को छोड़ता है, तो वो अकेला खड़ा रहता है। एक सेवक ने मुझसे कहा, ठीक वहाँ एक इंटरव्यू होने के बाद, एक सेवक ने कहा, यहाँ पर देखो, मैंने उनसे मंच पर कहा, मैंने कहा, यदि मैं बिल्कुल ही गलत हूँ, यहाँ पर सैकड़ों सेवक हैं, कोई तो आकर और मुझे सिखाए कि क्या सही है। आपने किसी को तो आते हुए नहीं देखा, क्या आपने देखा? आप नहीं देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं है। एक सेवक जो प्रमुख सेवक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो बहुमूल्य भाई है, उसने अगर कहा, भाई ब्रैनम, आपकी सेवकाई में निश्चय आप आगे बढ़ सकते हैं और इसे कर सकते हैं, लेकिन यदि हम इसे स्वीकार करते हैं, तो हम स्वीकार करते हैं हमारी कलीसिया हमसे मुड़ जाती है, तब हम कहाँ जा सकते हैं? मैंने कहा, पूर्ण रूप से छिपने का स्थान यीशु मसीह है, यही है जहाँ आपको जाना है, मसीह के पास जाओ। तो ठीक है, उसने कहा, लेकिन हमारी सेवकाई? मैंने कहा, तुम्हारी सेवकाई बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी की सेवकाई होती है, यदि यह मसीह की है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहीं पर भी जाओ। कहा, तो यदि इस तरह का बपतिस्मा लेते हैं, वे मुझे मेरी कलीसिया से लात मारकर बाहर कर देते हैं। मैंने कहा, उन्होंने मुझसे किया तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? केवल उस महामार्ग में बने रहो, केवल उस छाया चित्र का अनुकरण करो, निश्चय ही बस इसके साथ आगे चलते चलो। कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें क्या मिला है। शाऊल के पास एक सिखाई हुई सेना थी, शाऊल के पास एक बड़ी बुद्धि से भरी हुई सेना थी। वे शमूएल को नहीं चाहते थे, जैसे मैंने यहाँ कुछ समय पहले प्रचार किया था। कहीं पर तो उनके पास वो बड़ी सेना थी। ओह निश्चय शमूएल, और शमूएल ने बताया उनके इस राजा को चुनने से पहले उसने उसे ऊपर लाया था। परमेश्वर उनका राजा था और परमेश्वर हमारा राजा है। हमें भला परमेश्वर के अलावा क्यों और कुछ चाहिए? क्यों एक मसीह को उसे अगुवाई करने के लिए कुछ और चाहिए? लेकिन पवित्र आत्मा नहीं, मैं नहीं जानता, मैं इसे समझ नहीं सकता हूँ। और शमूएल ने उन्हें ऊपर बुलाया, उसने कहा मैं तुम्हें कुछ तो बताता हूँ। कहा क्या मैंने कभी कुछ भी प्रभु के नाम से कहा लेकिन क्या वो पूरा नहीं हुआ? नहीं। क्या मैंने कभी तुम्हारा पैसा लिया? क्या मैंने कभी तुमसे पैसे मांगे? नहीं, तुमने हमसे कभी कोई पैसे नहीं मांगे। और जो तुमने कहा प्रभु ने इसे पूरा किया है, हम ये जानते हैं। उसने कहा फिर तुम परमेश्वर को ठुकराते हो और एक राजा को चाहते हो। तुम संसार की नई व्यवहार करना चाहते हो, और यही है जो आज पेंटिकॉस्टल कर रहे हैं। वो बौद्धिक दानव बनाना चाहते हैं, ये कलीसिया से सामर्थ को बाहर निकालना चाहते हैं, यह एक संस्था को बढ़ाना चाहते हैं और सदस्य को अंदर लाना चाहते हैं। यह मूर्खता है। और जब आप एक मनुष्य को संप्रदाय में बांधते हो, जब आप ऐसा करते हो, आप उस व्यक्ति से पवित्र आत्मा को दूर कर देते हो। उसे कहीं तो देना होगा, पवित्र आत्मा आगे बढ़ जाएगा। वो मनुष्य अपने संप्रदाय के कारण नहीं कर सकता है। अब उसने कहा और फिर ऐसा है, शाऊल ने उसकी सेना को प्रशिक्षित किया। उसके पास इजरायली थे और यह सब जानते थे किस ओर भाले को डालना है या जो भी करना है। लेकिन एक दिन वहाँ एक चुनौती देने वाला आता है, वो प्राचीन गोलियात। और भाई फिर बौद्धिक प्रशिक्षण से अधिक बात को लिया जाना है। इसने एक व्यक्ति को लिया जो अलौकिक के बारे में कुछ तो जानता था, लेकिन परमेश्वर के पास एक ऐसा व्यक्ति था। परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर के पास हमेशा ही कोई न कोई होता है, उसके पास हमेशा ही कोई तो ऐसा होता है। उसके पास एक मनुष्य था जिस पर वो अपने हाथों को रख सकता है, एक छोटे कद का प्राचीन गुलाबी। एक व्यक्ति वहाँ पर आता है, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वो वहाँ पर आता है और उसने कहा तुम्हारा मुझसे कहने का मतलब ये है कि तुम उस खतना रहित फिलिस्तीनी को, उस सेना को गिराने दोगे? और वहाँ वो प्राचीन शाऊल था जिसका सर और कंधा उन सबसे ऊंचा था। उसकी सारी बौद्धिक प्रशिक्षण ने कुछ भी अच्छा नहीं किया था। अब कलीसिया ने ऐसा ही किया है, वे पवित्र आत्मा से दूर चले गए हैं, वे परमेश्वर की सामर्थ से दूर चले गए हैं, वे आत्मा की अगुवाई से दूर चले गए हैं। और हमारे पास भी कीश के पुत्र हैं। एक दिन यहाँ पर अफ्रीका में हमारे पास भी अभी एक बड़ा दानव हुआ था जिसे वचन पर उसे एक मोहम्मदीन के द्वारा चुनौती मिली। क्या हुआ? उसने कीश के पुत्र के समान पानी को लिया। हमारे भाई का अपमान न हो, लेकिन उनके पास एक मनुष्य था जो जानता था कि परमेश्वर छुड़ा सकता है। उन्होंने उस छोटे प्राचीन दाऊद को वहाँ पर लाया और उसने कहा मैं तुम्हारे भालों के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ और तुम्हारे बौद्धिक प्रशिक्षण के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात को जानता हूँ। मैं एक भेड़ के पीछे गया जो मेरे शत्रु के द्वारा उठा ली गई थी। परमेश्वर उसे मुझे वापस लाने दो। उसने कहा तो कितना और अधिक मुझे तैयार करेगा मुझे इस खतना रहित फिलिस्तीनी को वापस लाने के लिए। हमें आज स्त्री और पुरुषों की जरूरत है जो इस सच्चाई को चाहते हैं। हालेलुया! एक संप्रदाय नहीं लेकिन एक सच्चाई, यही है जिसकी आज संसार को आवश्यकता है। संप्रदाय और संस्था नहीं, हमें परमेश्वर में सच्चाइयों की आवश्यकता है। संसार इसे नहीं चाहता है, वे इसे स्वीकार करना नहीं चाहेंगे, लेकिन कलीसिया के पास यह होना है। परमेश्वर चाहता है कि आपके पास यह हो। वो सच्चाइयों का परमेश्वर है। हाँ श्रीमान, एक रात मैं कुछ दोस्तों के साथ गया जो अभी यहाँ मौजूद हैं, उसमें से एक झुंड यहाँ यह देखने के लिए गए, सैमसन और डिलेला, जो एक सेलिल बी की डिमेली की प्रस्तुति है। मैंने इसके बारे में बहुत सुना था। मैंने सोचा मैं जाकर देखूंगा यह कैसा दिखता है। जब मैंने इसे देखा तो मैंने सोचना आरंभ किया, परमेश्वर ने शिमोन में इस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या देखा न्यायियों के दिनों में। देखो परमेश्वर मनुष्य को इस्तेमाल करता है, क्या आप यह विश्वास करते हैं? लेकिन वो तभी मनुष्य को इस्तेमाल कर सकता है जब उसे मनुष्य मिल सकते हैं, जब उसे कोई तो मिल सकता है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। न्यायियों के दिनों में एक समय था उसे एक भी मनुष्य नहीं मिल पाया। केवल जो एक बात वो कर सकता था, बस एक को खड़ा करे और वो किसी भी तरह से आगे बढ़े, और फिर एक और को खड़ा करके और वो किसी तरह से भी आगे बढ़े। उसके पास कोई मनुष्य नहीं था जिसमें वो पूरी तरह से सुनिश्चित होकर भरोसा कर सके। और मैंने सोचा उसने शिमोन के अंदर क्या देखा, शिमोन जो हमारे आज के बोझ से अगुवाई करने वाले हैं, एक स्त्री का पुरुष जो स्त्रियों के पीछे पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, आज के हमारे बोझ से अगुवाई करने वाले भी हमारे आज के वचन पर एक समझौता करने वाले के जैसे हैं। एक स्त्री उन्हें चलाती है, उन्हें प्रचारक होने के लिए रख देते हैं और इसी तरह से की बातें होती है। ओह मेरे प्रभु, मैं ऐसे ही किसी भी व्यक्ति से पूछता हूँ, एक स्त्री प्रचारक के लिए वचन बताओ, मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि पुराने नियम में जैसे पौलुस ने कहा, यहाँ तक नियम भी यो कहता है। मैं पुराने नियम की घटनाक्रम में कल देख रहा था और मैंने उसमें पाया कि यहाँ पर उनके पास विशेष व्यवस्था थी जिसमें एक स्त्री यहाँ तक दूसरे तीसरे आंगन में भी नहीं आ सकती थी, वे अकेले ही पुलपिट पर उसे आने देते हैं। उनके पास मंदिर में विशेष व्यवस्था थी ताकि अन्य जातियों को बाहर रखे और बाद में स्त्रियों को, और बाद में फिर वो लेवी आते हैं और फिर परम पवित्र स्थान है, वे यहाँ तक दूसरे आंगन में भी नहीं आ सकते हैं। यह बिल्कुल सही है और आज हमने स्त्रियों को हमारी प्रतिमा बना दिया है। हमारी बहुत सी अगुवाई करने वाली सुंदर स्त्रियाँ और इस तरह से उन्हें उकसाती हैं। उस स्त्री की आत्मिक सुंदरता होने दो जो कलीसिया है। आप जानते हैं एक स्त्री एक कलीसिया का नमूना है। हम दुल्हन हैं, वो कलीसिया दुल्हन है। वहाँ बहुत सारी दुल्हने हैं और फिर भी उन्हें वे फुसलाने देते हैं। आज के सेवक वे कलीसियाएं उन्हें सच्चाइयों से नीचे उतार देती हैं और वो क्या करती हैं? वे अपने बालों को काटती हैं, वे अपनी सामर्थ को काटती हैं। उनके पास अपने ही तरीके हैं। मेरी बहनों के खिलाफ कुछ नहीं, यदि एक मनुष्य को पत्नी से बेहतर परमेश्वर चीज दे सकता है तो वो उसे दे देता। लेकिन सब स्त्रियां पत्नियां नहीं हैं, सारी स्त्रियां नहीं, सारी महिलाएं माँ नहीं होती, वे सारी जिनके पास बच्चे हैं माताएं नहीं होती। मैंने कुछ तो देखा है, मुझे एक कुत्ते के लिए ज्यादा आदर है जो अपने बच्चों को लेते हैं और उन्हें जाकर फुटपाथ से उठा लेते हैं और उस पर और लोग इस गंदे छोटे कपड़े और चीजों को पहने और चीजों को डाले हुए और अनैतिक कपड़े पहने हुए बाहर निकलते हैं। मैंने कुछ मनुष्य को कल रास्ते पर जाते देखा है। मैं नीचे शहर में कुछ बात के लिए जा रहा था, मैंने एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति को रास्ते पर देखा जो रास्ते पर अपनी जवान सुंदर पत्नी के साथ जा रहे थे, छोटे गंदे कपड़े पहने हुए भयानक दिखाई देते थे। वो एक पुरुष नहीं, वो एक कायर है। कोई भी अपनी पत्नी को ऐसे कपड़े पहनने देता है वो एक पुरुष नहीं होता है। ओह, हो सकता है उसके पास मांसपेशियां हो, वो पशु है, वो जानवर है, एक पुरुष चरित्र होता है। यीशु वो सबसे महान पुरुष था जो कभी जिया, वो एक छोटा सा नाटा सा कद का व्यक्ति जिसकी कोई सुंदरता नहीं थी जो मुझसे चाहते, लेकिन उस एक यीशु मसीह के जैसा चरित्र जिसे प्रस्तुत करने वाला धरती पर कभी भी नहीं हुआ था। मैंने कुछ मनुष्य को 250 पाउंड उठाते हुए देखा है, उनके पास पुरुष का एक अंश भी नहीं होता है। जब ये आया कभी भी घोड़े जैसा ताकतवर मत होना, कभी कभी उनके पास एक घोड़े की चेतना नहीं होती है, इसलिए एक घोड़ा कुछ चीजों के लिए बुद्धिमान होता है। घोड़े अच्छी तरह से जानते होंगे, अब यह सच्चाई है। अब आप केवल आजमा लें कि घोड़ा उस घोड़ी को पकड़ने की कोशिश करने दो, आप देखना कि क्या होता है। घोड़े के पास उत्तम चेतना है, आपने देखा, और पुरुष के पास घोड़े के जैसी चेतना भी नहीं है। जब यह एक जीवन निवार के जांच के पर बात आ जाती है और हम उसे एक बिगड़ी हुई सोरी बुलाते हैं, उसे सोरी बुलाते हैं और बिगड़ी कुतिया, एक व्यभिचारी और बहुत सी सुंदर चेहरे की स्त्रियां जो यहाँ चारों ओर है परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही नीचे है, 10 लाख गुना उस एक व्यभिचारी कुतिया या सोरी से भी नीचे। यह बिल्कुल सही है, यह सुनने में बहुत बुरा सा लगता है, यही वो कारण है लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। यही है वो जब यीशु ने उन्हें सच्चाई बताई वे उससे मुड़कर चले गए, लेकिन वो घड़ी आ चुकी है और अभी है कि वो पिता कुछ तो चाह रहा है, उसकी आराधना आत्मा में हो और आत्मा में चलें और आत्मा में जिएं और सच्चाई को बताएं। सच्चाई हमेशा ही या तो आजाद करती है या बांध देती है। यदि आप बंधे हुए हैं तो फिर आप आजाद नहीं है, और यदि आप आजाद हैं आप इस तरह से नहीं जिएंगे। आप कहते हैं तो मुझे पवित्र आत्मा मिला है और अब भी आप उसी तरह से जीवन को जी रहे हैं, कुछ तो आपके साथ हुआ है। आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है जो पेंटिकॉस्टल में आया था, इसने आपको विभिन्न बनाया है। मैं अन्य भाषा बोलने में विश्वास नहीं करता, मैं दैविक चंगाई में विश्वास नहीं करता, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता, फिर आपको कभी पवित्र आत्मा मिला ही नहीं है जो पेंटिकॉस्टल पर उतरा, निश्चय ही आपको नहीं मिला है। आपने कैसा बपतिस्मा लिया था? मैंने बपतिस्मा लिया है। कैसे? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। कोई आश्चर्य नहीं किस तरह से तुम व्यवहार करते हो। देखा, और उसने कहा क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया जब से तुमने विश्वास किया? उन्होंने कहा हम पहले से विश्वास करते हैं, हमने बपतिस्मा लिया है। त्रिनितों के काम, देखो यह ऐसा नहीं है, हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है, यीशु का, उसने कहा उसी मनुष्य का जिसने यीशु का बपतिस्मा किया। उसने कहा ये काम नहीं करेगा। कहा तुम्हें आकर फिर से बपतिस्मा लेना होगा यदि तुम पवित्र आत्मा को पाना चाहते हो तो। तुम्हें हो सकता है जो तुम्हें मिला हो जो उसके जैसा दिखाई देता हो, कुछ तो उसके जैसा कार्य करता हो, थोड़ा बहुत मिलता हुआ, लेकिन ये वो वास्तविक चीज नहीं है। कारण तुम्हें आकर और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना होगा। और उन्होंने जब ऐसा किया उसने उन पर हाथ को रखा और फिर पवित्र आत्मा उन पर उतर कर आ गया। उन्होंने सोचा था उनके पास यह था। और मैं जानना चाहता हूँ वो भाई जो यहाँ इस कलीसिया में है या ये कहा था, कहा कि उस मूल यूनानी ने नहीं कहा जब तुम विश्वास करते हो पवित्र आत्मा को पाते हो, कहा यूनानी ने यह कहा था। मैं चाहता हूँ कि आप जाने ये गलत है, यह एक गलती है। यहाँ तक कि यूनानी ने भी नहीं कहा, न ही इब्रानी, न ही अरेमिक ने कहा। इसने कहा क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया जब से तुमने विश्वास किया? ऐसा नहीं कि जब तुम विश्वास करते हो। इसलिए ये किसने कहा? तुम जानते भी नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो भाई, समझे? नहीं श्रीमान, तुमने पवित्र आत्मा को पाया तुम्हारे विश्वास करने के बाद, ना ही जब तुम विश्वास करते हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक दान है जो तुम पर आता है, जो तुम्हें बदलता है और पूरी तरह से जो दुनिया है उससे अलग बनाता है और दूसरे लोगों से अलग। आप अलग हैं। आपके पास पहनने के लिए कोई और अलग तरीके के कपड़े नहीं होते हैं। आप कोई अलग गोल कॉलर की कपड़े को नहीं पहनते हैं या लंबा वस्त्र। आप अलग ही जीते हैं, आप अलग ही करते हैं। परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है। लोग आपको जानते हैं, आप पर ध्यान दिया जाता है जहाँ कहीं भी आप जाते हैं। परमेश्वर उसके अपनों को जानता है, वो उसके अपनों को छाप लगाता है। यह ऐसा ही है, लेकिन आपको सच्चाई पर आना ही है, समझे? शिमशोन में वो क्या था जो एक स्त्री के पीछे चलने वाला था? निश्चय ही वो घमंडी था, अपने माता पिता की आज्ञा न मानने वाला। उन्होंने उससे कहा वहाँ उस स्त्री के साथ मत जाना जो इजाबेल है, लेकिन उसने उनकी नहीं सुनी। यह क्या था? शिमशोन के पास शक्ति थी। अब सुनना, शिमशोन अपनी शक्ति को पूरी तरह से प्रस्तुत करना चाह रहा था। शिमशोन ने अपनी शक्ति को परमेश्वर को दिया, लेकिन उसने अपने हृदय को दिलेला को दिया। इसी तरह से आज है। अब बहुत से पुरुष दूर विद्यालय जाकर और सीखेंगे, ओह एक बौद्धिक दानव, सारे यूनानी और हर एक चीज को सीखते हैं, लेकिन जब ये सच्चाई पर आते हैं ये अपनी पढ़ाई की शक्ति को परमेश्वर के लिए दे देगा। हाँ, लेकिन उसका हृदय कलीसिया को दे देगा और परमेश्वर को नहीं। यही वो बात आज लोगों के साथ है। वे अपने संप्रदायों को अनुकरण करना चाहते हैं। वे पवित्र आत्मा की सच्चाई को नहीं चाहते। वे कुछ अलग नहीं चाहते। वे वही करना चाहते हैं जो हमेशा से करते आए हैं। लेकिन जब आप एक मसीह बनते हैं, आप एक अजीब व्यक्ति होते हैं, एक शाही पुरोताही, एक अनोखा राष्ट्र, विचित्र लोग विचित्र बातों को करते हुए और अनोखी बातें संसार के लिए जो अनुचित होती है। जब आप संसार में होते हैं आप परमेश्वर के लिए अनुचित होते हैं। वो एक जो दूसरों से विपरीत है, वो एक जो तुम्हें ऐसा करने को लगाता है जैसे वे स्वर्ग में करते हैं, और दूसरा तुम्हें ऐसा बनाता है जो तुम धरती पर करते हो। और यदि लोग वैसा करना चाहते हैं जैसे वो धरती पर करते हैं और जाकर कहते हैं वे स्वर्ग पर जा रहे हैं, लेकिन क्या ही निराशा की बात है जो होने जा रही है। यीशु ने कहा बहुत से मेरे पास उस दिन आएंगे, वे लाखों लाख खड़े होंगे और कहेंगे मैं इससे ताल्लुक रखता हूँ और मैंने यह किया है, और उसने कहा मुझसे दूर हो जाओ तुम अधर्म के कर्म करने वालों, तुमने संस्थाओं की सेवा की है। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते थे, सारे परमेश्वर के पुत्र और कन्या आत्मा के चलाए चलते हैं, वे आत्मा के द्वारा बढ़ते हैं, विचित्र अनोखे, वे ठीक बने रहते हैं और हर एक कार्य बाइबल के साथ होता है। वे बने रहते हैं, उनके सारे सिद्धांत ठीक बाइबल के साथ बने होते हैं। वे एक बात भी नहीं पलटते हैं, चाहे बाइबल ये कहता है वे ठीक उसमें आगे बढ़ेंगे। यदि वो एक मिनट के रुकते हैं, वे अध्ययन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरफ जाना है, और तब पवित्र आत्मा से प्रकट करता है वो ठीक इसमें आगे बढ़ता है, और वो वही बात वो करता है, उन्हीं नियम को पालन करता है, उसी बुनियाद को रखता है, वही परमेश्वर उस पर आता है और वही आश्चर्य कर्म और वही चमत्कार और वही चिन्ह उसके पीछे जाते हैं जिसने उसका पीछा किया। उसने कहा यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, एक मनुष्य के नाते मेरे कामों पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। यदि मैं पिता के कामों को नहीं करता तब मुझ पर विश्वास मत करो। देखा, वहाँ इस विश्वास के साथ कार्य भी होता है। मुझे तुम्हारा कार्य तुम्हारे बिना विश्वास के दिखाओ और मैं तुम्हें मेरे विश्वास के द्वारा मेरे काम को दिखाऊंगा। पौलुस ने कहा, समझे? अब देखना शिमशोन में क्या था। उसने अपने हृदय को समर्पित नहीं किया। आज पुरुष अपने संप्रदाय को अधिक सोचते हैं और फिर और लोग अपने संप्रदायों की अधिक सोचते हैं। तो अब मैं कलीसिया के विरोध में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल के बारे में बात कर रहा हूँ जो यह कलीसिया पेंटिकॉस्ट का सहारा लेती है। यह एक पेंटिकॉस्टल संस्था नहीं है। हम किसी संस्था से ताल्लुक नहीं रखते, हमारा कोई इरादा नहीं है। हम मसीह के हैं, यह सही है। और अब पेंटिकॉस्ट एक संस्था नहीं है, पेंटिकॉस्ट एक अनुभव है जिसे लोग लेते हैं। मैथोडिस्ट इसे लेते हैं, कैथोलिक इसे लेते हैं, बैप्टिस्ट इसे लेते हैं, कोई भी इसे ले सकता है, लेकिन यह एक अनुभव है। और वहाँ हजारों हजार हैं जो खुद को पेंटिकॉस्ट कहते हैं, वे जानते भी नहीं कि पेंटिकॉस्ट का पहला संदेश क्या है। इससे पहले कि आप सही शुरुआत करें, आपको सही बुनियाद को लेना होगा, आपको पेंटिकॉस्टल की बुनियाद पर आना होगा। पेंटिकॉस्टल की बुनियाद क्या है? जब पेंटिकॉस्ट के दिन कलीसिया का शुभारंभ किया गया था, जब उन्होंने उन्हें अन्य भाषा में बोलते देखा और वो कुंवारी मरियम वहाँ बाहर निकली जैसे उसने मदिरा पी रखी हो, और वे बाकी लोग इस तरह इधर उधर लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने कहा, क्या ये क्या है? क्या उन्होंने पी रखी है? पतरस ने कहा, उन्होंने पी नहीं रखी है। आपको ऐसा लगता है? देख रहे हो, यह दिन का तीसरा पहर है। यह वही है जो पहले छाया चित्र पर कहा गया, वहाँ पहले उस मार्ग के नक्शे पर। यह वही है जो मार्ग के नक्शे पर कहा गया। योएल ने कहा, हम उसी स्थान पर आए हैं, हम उस जंक्शन पर आए हैं। यह अंतिम दिनों में पूरा होगा। यह अंतिम दो दिन, अंतिम 2000 वर्ष है। परमेश्वर यो कहता है, मैं अपनी आत्मा को सारी देह पर उतारूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबोध करेंगे, और मेरे दास और दासियों पर उतरेगा। तुम्हारे जवान पुरुष दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग पुरुष स्वप्न देखेंगे। मैं ऊपर स्वर्ग में चिन्ह और चमत्कार को दिखाऊंगा, इस तरह की बातें करूंगा। उन्होंने कहा, हम इसे पाने के लिए क्या कर सकते हैं? किस प्रकार की तुम एक बुनियाद को डालने जा रहे हो पतरस? तुम्हारे पास स्वर्ग की कुंजियां हैं। उसने कहा, तुम में से हर एक जन पश्चाताप करो और अपने पापों के पश्चाताप के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा को पाओगे। यह प्रतिज्ञा हर एक पीढ़ी के लिए है जो बाद में अनुकरण करेगी, तुम्हारे बच्चों और उनके लिए जो बहुत ही दूर हैं, और जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। यह वो बुनियाद है। देखो, वे आएंगे और अपने पाठशाला जाएंगे, लड़के सेवक होने के लिए वे विद्यालय जाएंगे। क्यों, ठीक बात है, इसके विरोध में कुछ नहीं, लेकिन आप सेवक होने के लिए नहीं सीख सकते हैं। सेवक का दान परमेश्वर से एक दान है। वे प्रेरित चतुर और बहुत पढ़े लिखे थे जितना वो हो सकते थे। यीशु ने फिर भी वे नहीं थे, लेकिन उसने उन्हें प्रचार करने नहीं दिया जब तक वे पवित्र आत्मा को पा नहीं लेते हैं। और जब उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, अब यदि आप एक विद्यालय में जाते हैं और वो अनुभव को जो उन्हें पेंटिकॉस्ट पर मिला तुम पर आता है, आमीन। लेकिन यदि आप ऐसी ही बौद्धिक विचारधाराओं के जरिए से बाहर आते हैं, और तो एक मास्टर और बैचलर की उपाधि और विभिन्न बातें एक साथ, एक बैचलर की उपाधि और सारी दूसरी बातों के साथ, यदि आप उन उपाधियों के साथ बाहर आते हैं, आप अपनी शक्ति को बस अपनी पढ़ाई लिखाई को दे रहे हैं। आप अपने हृदय को परमेश्वर को देना चाहते हैं। परमेश्वर आपके हृदय को चाहता है। हाँ श्रीमान, वो अपनी शक्ति को देता है, उसके हृदय को नहीं। हाँ श्रीमान, परमेश्वर केवल वही इस्तेमाल करता है जो हम उसे देते हैं। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे, मैं उसे रविवार सुबह के 15 मिनट दूंगा। यदि वो भाई, यदि तुम उससे ज्यादा प्रचार करते हो, मैं उठकर और घर चला जाऊंगा। तो ठीक है, तुम्हारे पास रविवार सुबह के 15 मिनट है, यही है जो तुम परमेश्वर को देना चाहते हो। किसी ने कहा, मैं हो सकता है एक आधे घंटे तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं नहीं जानता मैं इसे किस तरह से कर सकता हूँ। तो देखो, यही है जो तुम्हारे पास है, 15 मिनट, एक आधा घंटा। देखा, आप क्या दे सकते हैं? जो आप देंगे परमेश्वर से स्वीकार करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको पूरी तरह से चाहता है। वो आपका हर एक अंश चाहता है, वो सब चाहता है, वो सब कुछ चाहता है जो आप हैं। वो आपके जीवन को चाहता है, वो आपकी गवाही को चाहता है, वो आपके हर एक मिनट को चाहता है जो आप जीते हैं। वो आपसे चाहता है सही जिए, सही कार्य करें, सही बातें करें, सही करें। वो हर एक चीज उसके लिए सिद्ध रूप से समर्पित चाहता है, जिसमें वो आपकी अगुवाई कर सकता है और उस स्थान में रख सकता है जहाँ वो आपको ले जाना चाहता है, आत्मा के चलाए चलना। लेकिन आज के लोग कहते हैं, अब एक मिनट रुकना, यदि मेरा पास्टर 15 मिनट से ज्यादा प्रचार करता है तो। मैंने ये बहुत बार सुना है, मैंने अच्छे पास्टरों को कलीसिया से मुड़ते हुए देखा है, क्योंकि डिकन के सदस्यों ने कहा, अब देखो यहाँ आदरणीय, हमने तुमको यहाँ पर काम पर रखा है ताकि तुम यहाँ पर आओ, और हमने तुम्हें कभी भी इस काम के लिए नहीं रखा ताकि तुम यहाँ पर आकर और हम पर रोज सुबह आलोचना करो। हम तुमसे चाहते हैं, हमने 20 मिनट का समय ठहराया है, घंटी बजती है, और अच्छा होगा कि तुम इसका ध्यान रखो। आप जानते हैं, मैंने एक ऐसी कलीसिया को चाहा था जो एक समय पर हुई थी। मैं उस सौभाग्य को लेना चाहूंगा कि उन्हें बताऊं कि मैं उनके बारे में जो सोचता हूं और वचन उनके बारे में क्या कहता है। हाँ, क्योंकि यदि उसमें से पूरा दिन बीत जाता है तो भी बस प्रचार करते रहो, समझे। परमेश्वर एक संपूर्ण समर्पण को चाहता है, क्या आप यह विश्वास करते हैं? परमेश्वर एक समर्पण को चाहता है। आपके समर्पण से पहले भला कैसे परमेश्वर आपको सच्चाइयों को बता सकता है? आपको समर्पण करना होगा। जब आप समर्पण करते हो, आप उस गीत को गाते हो, मैं समर्पित करता हूँ, मैं सब समर्पण करता हूँ। उन सिगरेटों के बारे में क्या है, उन कपड़ों के पहनने के बारे में क्या है, उस गुस्से के बारे में क्या है, उन दूसरी चीजों के बारे में क्या है जो इनके साथ जाती है, उस छोटे चरित्र के बारे में क्या है जो तुम्हें मिला है, उस छोटे ताक झाक करने वाले विचारों के बारे में क्या है, किसी को भी डांटने के बारे में क्या है जिसने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया है। जबकि बाइबल में ऐसी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ किसी ने भी कोई और तरीके से बपतिस्मा लिया हो। मैं किसी को भी चुनौती देता हूँ जो मुझे दिखाए कहाँ पर कोई व्यक्ति कोई भी समय कैथोलिक कलीसिया के बाहर आखिरी पीड़ित के मरने के बाद जब उन्होंने आरंभ किया जहाँ बपतिस्मा में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को कभी इस्तेमाल किया गया हो, आकर मुझे वचन या इतिहास से दिखाओ। यह एक कैथोलिक संस्था है, यह एक प्रोटेस्टेंट्स नहीं है। अब मैं आपको बाइबल से दिखा सकता हूँ जहाँ पर बाइबल नबूवत करता है कि वे मेरे नाम का इस्तेमाल उस समय तक करेंगे और एक झूठे नाम से बाहर आएंगे जिसमें वे रह रहे हैं और वे मरे हुए हैं। मैं तुम्हें यह वचन से दिखा सकता हूँ, बाइबल ने कहा वे करेंगे। यहाँ पर यह ठीक उनके चेहरे के सामने लाया गया है। लोग इसे क्यों नहीं लेते हैं? ठीक बिल्कुल वैसे ही उन्होंने यीशु के दिनों में किया। वे सच्चाइयों को नहीं चाहते, वे एक संप्रदाय को चाहते हैं, वे कुछ तो चाहते हैं। वहाँ जाकर कहते हैं मैं इस स्थान से ताल्लुक रखता हूँ, मैं उस झुंड से ताल्लुक रखता हूँ, मैं ताल्लुक रखता हूँ। क्या आपको स्वर्ग में ताल्लुक रखना चाहिए? यही है जहाँ आपका लगाव होना चाहिए, जो बातें ऊपर की है। यीशु ने कहा अपना मन ऊपर की बातों पर लगाओ, न कि धरती की बातों पर, वे सब झुक जाएंगी। परमेश्वर के साथ बने रहो, सच्चाइयों के साथ बने रहो। परमेश्वर एक सच्चाई का परमेश्वर है, वो हमेशा ही युगों में होता रहा है। किसी समय भी मनुष्य कभी भी परमेश्वर के साथ चला है, परमेश्वर सच्चाई बना है जिसने चिन्ह अद्भुत कामों और चमत्कारों को उनके लोगों के साथ दिखाया। यह परमेश्वर का ऐसा करने का उद्देश्य है, सब समर्पण करो। ठीक वहाँ लुइसविल में केंटकी में ज्यादा समय नहीं हुआ, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे परिवार के लोग थे। उनका एक बीमार बालक था, उन्होंने इसके प्रार्थना के लिए बुलाया। डॉक्टर अस्पताल से चले गए थे और उस बालक के बारे में पूछा कि क्या है। उसने कहा वो बालक मर रहा है, इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। कहा इसे लुकेमिया हो गया है, कहा ये बालक मरना है। सोचा ओ परमेश्वर, आपने अब भी यह नहीं कहा, आपने कभी ये गवाही नहीं दी। मैंने जाकर माता पिता से बात की और वे माता पिता रो रहे थे और वे चीख रहे थे। वहाँ वो बालक चला गया था जहाँ तक वे जानते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? डॉक्टर सही था, उसने जो भी वो करना जानता था उसने कर दिया था। लुकेमिया एक खत्म करने वाला है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता है। कहा वो बालक मरने जा रहा है। वो बूढ़ा जो उस बालक का दादा था, आप सारी बातों को जानते हैं, और वो बूढ़ा उस बालक का दादा वहाँ आगे आया। जब उसने मुझे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में बोलते हुए सुना, उसने कहा मैं हमेशा ही याद करता हूँ वर्षों पहले जब एक बूढ़े प्रचारक ने कहा एक समय आने वाला है जब लोग फिर से पवित्र आत्मा को पाएंगे और चिन्ह और अद्भुत काम को किए जाएंगे। वो खुद वहाँ से एक छोटे कमरे के अंदर चला गया, वो अपने पुत्र और पुत्र वधु के साथ, और नहीं रुका। वो वहाँ उस छोटे कमरे के अंदर रुका रहा, रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है। जब वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से बाहर निकला, उसके सर से पसीना बहता हुआ माथे पर था, उसकी आंखें भरी हुई थी। कहा वो बालक जिएगा। कहा क्या? उसने कहा डॉक्टर, मैं आपका विज्ञान के एक मनुष्य होने के नाते आपका आदर करता हूँ। मैं आपके और आपके बुद्धि का जो आपने चिकित्सक जांच में सीखा है आपका आदर करता हूँ। लेकिन कहा मैं प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना करता रहा और मैंने प्रार्थना करता रहा जब तक मैंने सब कुछ समर्पित नहीं कर दिया जो मुझे समर्पित करना था। और पवित्र आत्मा ने कहा वो बालक जिएगा। ऐसा हुआ क्यों? जो भी उसके पास था उसने समर्पित कर दिया था। परमेश्वर उसे ले लेता है और उससे बात कर सकता है जब उसने सब कुछ समर्पित करने की इच्छा रखी। यही है जो हमारी कमी है। आप अपने मार्गों को समर्पित नहीं करना चाहते हैं, आप अपने तरीकों को समर्पित नहीं करना चाहते हैं, आप वो छोटे गुट को समर्पित नहीं करना चाहते हैं जिससे आप ताल्लुक रखते हैं, आप कोई भी समय को समर्पित नहीं करना चाहते। आपको प्रार्थना करने के बजाय ये करना है, वो करना है या कुछ और करना है, आप उन बातों को परमेश्वर को समर्पित नहीं करना चाहते। परमेश्वर आपसे समर्पण को चाहता है। बंद करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मेरे पास समय नहीं है। परमेश्वर पूरी तरह से समर्पण को चाहता है। जब आप सब कुछ समर्पण करते हैं तब आप जानेंगे जिस बारे में मैं बोल रहा हूँ वो सच्चाई है। और यदि आप कहते हैं वे मुझे मेरी कलीसिया से बाहर कर देंगे, वे मुझे प्रचार नहीं करने देंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो एक विज्ञान संबंधी संस्था है। हम जिस बारे में बोल रहे हैं वो आत्मा में चलना है। परमेश्वर एक सच्चाई है। क्या होता यदि मूसा ने कहा होता अब रुको, मैंने मिस्र में जादूगरी में महारत हासिल की है, यह सब सीखा है और इत्यादि, मैं उन मिस्रियों को कुछ कुछ तरीके सिखा सकता हूँ, मैं उन्हें नीति शास्त्र सिखा सकता हूँ, मैंने इसमें एक महारत हासिल की है, लेकिन जो भी वो जानता है उसे सब कुछ भूल जाना था और परमेश्वर बस उसमें से सब कुछ निकाल देना चाहता था। इसे करने के लिए उसने 40 वर्ष ले लिए, लेकिन जब वो परमेश्वर से आमने सामने मिला, वो जानता था कि एक जीवित परमेश्वर था। उसने उसे जलती झाड़ियों में देखा था और उसने उससे बातें की थी। उसने नीचे जाकर और उस काम को खुद के जरिए से किया। उसके पास एक सेना को नहीं होना था, वो उसके साथ नीचे गया और वो परमेश्वर उसके मार्ग के नक्शे का अनुकरण किया। उसके पास परमेश्वर की सामर्थ्य थी, उसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, उसके पास परमेश्वर का आत्मा था। उसे अपने नीति शास्त्र और पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब यीशु यहाँ धरती पर था, उसे एक मनुष्य को पाने के लिए फिर से ढूंढना था। वो ऊपर और ऊपर चलता गया। वो पढ़े लिखे और बुद्धिमान थे। क्या वो किसी भी मनुष्य को पा सका? नहीं श्रीमान, उन्होंने उसे बालजबुल कहा। शैतान वो एक भी नहीं पा सका जो उसका अनुकरण करे। उसने क्या किया? उसे सबसे बेहतर को लेना था जो उसे मिल सके। क्या यह तरस खाना नहीं है? मैं हमेशा ही सोचता रहता था, और हम बंद कर रहे हैं कलीसिया, इस मुख्य बात पर ध्यान देना। मैं हमेशा ही सोचता, क्या कैसे हम खुद से वंचित रह गए हैं, कैसे हमने परमेश्वर की योजना से वंचित कर दिया है, अपने जीवनों को उसे समर्पित न करते हुए जो कुछ हमारा है उसके लिए है। हमने कैसे उसे उसकी योजना से इनकार किया है? हम कैसे रोके हुए हैं और उसे रोके रखा है और उसे रोके रखा है और उसे रोके रखा है? वो किसी को तो ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसके जरिए से वो काम को कर सके। एक व्यक्ति को किसी से तो पाने की कोशिश कर रहा है जिस पर वो यकीन कर सके। कुछ मनुष्य जो सब कुछ समर्पित करें, एक समझदारी में आकर परमेश्वर के मार्ग से अवगत होंगे, कहेंगे पिता मैं यहाँ हूँ, मैं परवाह नहीं करता, मैं वचन का उस छाया क्षेत्र का अनुकरण करूंगा, मैं किसी को भी परवाह नहीं करता कोई क्या कहता है, मैं इसके साथ बना रहूंगा, इसका वास्तव में इरादा है, मैं परवाह नहीं करता मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़े, मैं इसे आरंभ करने के लिए कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेरी अगुवाई करें और ऐसा हो पवित्र आत्मा जिसने इस बाइबल को लिखा और इन प्रतिज्ञाओं को किया इसे मेरे जीवन के जरिए से वापस साबित करे। मैं महसूस करता हूँ कि आप मुझे उस मार्ग की ओर अगुवाई कर रहे हैं, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यशायाह ने मंदिर में कहा जब उसने दूतों को अपने पंखों को उसके चेहरों पर ढापते हुए देखा, अपने पैरों पर ढापते और पंखों से उड़ते, और उन्होंने आग के कोयले को लिया और उसके होठों को साफ किया, तब परमेश्वर का आत्मा उस पर आ गया। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? परमेश्वर ऐसे ही मनुष्य को नहीं पा सका। जब उसने अपने चेलों को ढूंढ निकाला, वो उसके अपनों के पास आया, उसके अपनों ने उसे नहीं स्वीकारा, उसने किसी को नहीं पाया, वे उसके लिए रुके हुए थे। आज संसार दैविक चंगाई के लिए रुका हुआ है, लेकिन मैं परवाह नहीं करता तुम कितनी दैविक चंगाई करते हो, फिर भी वे तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। तो ठीक है, इसके बाद वे यीशु से मुड़ गए। जब 70 लोग छोड़कर चले गए, वो उन चेलों के पास भी मुड़ा, कहा क्या तुम भी जाना चाहते हो? उन्होंने कहा हम कहाँ जाएं? पतरस ने कहा तेरे पास अनंत जीवन की बातें हैं, समझे? और वो वहाँ से चला गया और वहाँ एक मनुष्य था जिसकी आंखों में तारे भी नहीं थे, और उसने कुछ गीली मिट्टी को लिया और उसकी आंखों पर लगा दिया। उसने कहा जाकर उस सिलुम होट पर धो लो, और जब उसने ऐसा किया वो वापस देखता हुआ आ रहा था। क्या इस बात ने उन्हें बदला? क्या उसकी प्रसिद्धि बढ़ी? यह कम 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 होती गई। क्यों? वो मार्ग पर बना रहा, वो मार्ग के नक्शे पर बना रहा। ये आज भी ऐसा ही है, वे चिन्हों अद्भुत कार्यों चमत्कारों और सब कुछ हुआ देखते हैं और वे कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, यह कैसे भी होना ही है, समझे? उन्होंने लाजरस को कब्र से उठाया, ऐसा दिखा जैसे सारे राष्ट्र को ये हिला देगा। बाइबल ने कहा वो ऐसा करेगा। वो चिन्ह थे जो उसके पीछे आने थे। जब वो यहाँ सामरी स्त्री के पास हुआ और कहा तेरे 5 पति हैं, इससे सारी दुनिया हिल जानी चाहिए थी। और आज अपने लोगों में खड़ा है, और आपने देखा है कि यह समय समय पर उन्हीं कामों को करके दिखाता है, और वे कहते हैं क्यों? मैं सोचता हूँ कि यह सब सही था। देखो ऐसे ही बेपरवाह होते हैं, कोई समर्पण नहीं। ओह, वे थोड़े समय को देते हैं, कभी तो एक बार कलीसिया में जाते हैं और इसी तरह से कुछ करते हैं, लेकिन जब यह एक समर्पण करने की बात आती है, नहीं, वे इसे नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, वे इसे नहीं चाहते हैं। जब यीशु ने अपने चेलों को बुलाया, उसको क्या करना है? बहुत ही अनपढ़ के जैसे पुरुष और लोगों को लेता है जो यहाँ तक अपने नाम का हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते हैं। पतरस, यूहन्ना, बाइबल ने कहा वे अनपढ़ और गवार थे, यही है जिसे उसे लेना था। लेकिन यदि वे बुद्धिमान होंगे तब वे उसकी सुनेंगे, वे उसकी अब भी नहीं सुनते हैं। उसके पास उनकी खुद की कार्य प्रणाली थी, वे अपने खुद के मार्ग पर हैं और वे उसी का अनुकरण करते हैं, क्योंकि उन्हें उसी तरह से शिक्षा दी गई है, क्योंकि उनके पास्टर, उनके बिशप और उनके प्रधान और वे पोप और जो कोई भी है उन्हें उस रास्ते को निर्देशित किया है। लेकिन वो पवित्र आत्मा आपको वापस पेंटिकॉस्ट पर लेकर आएगा हर एक समय उन्होंने वचन में हर एक के लिए किया है और यह इस दिन में हर एक के लिए होगा। यह तुम्हें उस सच्चाई पर वापस लेकर आएगा। यह तुम्हें वापस आत्मा की सामर्थ के लिए एक बपतिस्मा के लिए लेकर आएगा जो तुम्हें अगुवाई करेगा और कभी एक भी वचन बाइबल में से नहीं निकालेगा। यह ठीक बाइबल में होना रहेगा जहाँ पर यह कहा गया है। यह ठीक इसमें से होकर अनुकरण करेगा। पवित्र आत्मा इसे करेगा। यह एक सच्चाई को लाता है। उसने क्या किया? उसने उन मछुआरों को लिया था जिनके पास यहाँ तक पहनने के लिए कपड़े भी न थे। ऐसे ही कुछ तो अपने चारों ओर लपेटे हुए थे मछली के टुकड़े के जैसा और इत्यादि। कोई कपड़े नहीं, बहुत ही अनपढ़। वे अपने नाम के हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे। गवार कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, लेकिन उसने किसी को तो पा लिया था। उसे किसी को तो लेना था, लेकिन उसने इस तरह की अवस्था में उन मनुष्य को पाया जो समर्पण करना चाह रहे थे। जो चाह रहे थे उनके पास कुछ भी नहीं था पकड़ के रखने के लिए। उनके पास कलीसियाएं नहीं थी, कोई संस्थाएं नहीं, कुछ भी नहीं। वे केवल अनपढ़ मछुआरे थे, भेड़ों को चढ़ाने वाले। नहीं जानते कैसे लिखना है, नहीं जानते कैसे पढ़ना है, नहीं कुछ भी नहीं। लेकिन उनके पास गवाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसे वे मिल गए और उन्होंने समर्पित किया। उन्होंने कहा, जो कुछ भी आप कहेंगे प्रभु, हम वो करेंगे, हम आपका अनुकरण करेंगे। लेकिन जब उन्होंने पूरी तरह से समर्पण किया और खुद को परमेश्वर को दे दिया, परमेश्वर ने उन्हें एक पेंटिकॉस्टल की सच्चाई दी। उसने उन्हें ऊपर पेंटिकॉस्टल के लिए अगुवाई की और उन्हें वो पवित्र आत्मा दिया। वे वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा के नीचे थे, लोगों के लिए सब प्रकार के मूर्ता के चिन्हों को करते हुए, पकड़ाते हुए और आगे करते हुए और यह कोशिश करते। बाइबल ने कहा वे कहाँ पर थे? वे उस महामार्ग पर थे। बाइबल ने कहा हकलाते ओठ होंगे और अन्य भाषा के साथ मैं उन लोगों से बात करूंगा और यह उनके प्राण के लिए विश्राम है। यही वो बात है जो आने वाली है। यशाया 28:18 इसे पढ़ें। लड़खड़ाते होठो और अन्य भाषा के साथ मैं इन लोगों से बात करूंगा। ये वो विश्राम है, रविवार नहीं, बाकी के दिन नहीं। पवित्र आत्मा वो विश्राम का दिन है। तुम जो एडवेंट के भाई हो, सातवां सप्ताह का दिन विश्राम का दिन नहीं है, पवित्र आत्मा विश्राम का दिन है। लड़खड़ाते होठों और अन्य भाषा में मैं लोगों से बात करूंगा और यह सबत है। यह है सबत का मतलब होता है विश्राम। यह प्राण के लिए विश्राम है। आपके पास अनंत विश्राम है। जैसे परमेश्वर जब उसने जगत बनाया सातवें दिन उसने उसके बाद विश्राम किया, उसने विश्राम किया, वो विश्राम पर चला गया। जब हम परमेश्वर के अंदर प्रवेश करते हैं हमारे पास अनंत जीवन होता है। पवित्र आत्मा तुम्हें विश्राम देता है। अब उनके पास एक पेंटिकॉस्टल का अनुभव था, परमेश्वर की एक सच्चाई। उन्होंने कुछ तो पाया। मुझे एक बात को और कहने दो, संप्रदाय एक भूखे हृदय को तृप्त नहीं करते हैं। संप्रदाय ऐसा नहीं करेंगे। यदि एक मनुष्य परमेश्वर के लिए भूखा है, तुम उसे कहते हो, संप्रदाय के प्रेरित कहते हैं कलीसिया से जुड़ो, अपने नाम को यहाँ डालो, छिड़काव करना या डूबना है या जो कुछ भी आप करते हैं, यह कभी भूखे प्राण को तृप्त नहीं करेगा, क्योंकि वे पहले उस जीवन को ढूंढने के लिए ठहराए गए हैं। वे एक समय दूत थे, वहाँ एक समय एक दूत थे जो कभी हारे नहीं। दो तिहाई स्वर्ग में दूत हार गए। वे वो दुष्ट आत्माएं हैं जो इन लोगों के बीच काम कर रही है। बहुत ही धार्मिक, आप जानते हैं कि बाइबल ये कहता है। आप सब यहाँ ऐसे ही हमेशा सही नहीं थे, तुम एक समय कहीं पर तो थे। याद रखना, पाप का आरंभ धरती पर नहीं हुआ था, पाप का आरंभ स्वर्ग में हुआ था। जब लूसीफर ने इसे लेकर और बनाया, उसने कहा मैं संस्था को चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी चीज को बनाना चाहता हूँ, उत्तर देश में जाकर और मिकाइल के पास जो था उससे भी बड़ी चीज को बनाता हूँ। और लूसीफर सर से लात मारकर बाहर कर दिया गया। और वे जो दूत पहले वहाँ थे वे आत्माएं, जब यही वो कारण था जब हमारा धरती का घर ढा दिया जाएगा। हमारे पास पहले से एक और रुका हुआ है, समझे? और यही कारण है हमारा नाम जगत के नींव डालने से पहले मेमने की किताब में डाल दिया गया। जो भी पिता ने मुझे दिया है वो मेरे पास आएंगे। आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास आंखें हैं और देख नहीं सकते, कान हैं पर सुन नहीं सकते, कोई आश्चर्य नहीं। देखा, वहाँ वो सारी बातें हैं। देखो जो परमेश्वर ने वहाँ पहले प्रतिज्ञा की और सब। और मैंने एक रात कहा था कि एक मनुष्य, यीशु ने कहा वो पशु जो धरती पर आता है वो मसीह विरोधी है, बहुत ही धर्मी रहा है, इतना नजदीक हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देगा। वो बड़ी, कैसे वो बड़ी संस्थाएं आरंभ होगी और उनके पास दूसरी संस्थाएं होंगी। वो पुरानी माता वेश्या और उसकी वेश्याओं की छोटी बेटी जो बाहर निकली संस्थाएं हैं, कहा और वे लगभग सारे संसार को भरमा देंगे। यह हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे यदि यह संभव होता, लेकिन यह संभव नहीं है। उनके नाम मेमने पर रखे गए थे जिन्हें वो पहले से जानता है उसने बुलाया, जिन्हें उसने बुलाया उसने धर्मी किया है, और जिन्हें धर्मी किया उसने महिमावान भी किया है। तो और कोई नहीं है। आपने देखा, यह सही है। आप नहीं आ सकते हैं जब तक वो आपको नहीं बुलाता है। यह आपके चाहने या आपके दौड़ने से नहीं, यह परमेश्वर है जो दया दिखाता है। यह बिल्कुल ऐसा ही है, यही है जो वचन ने कहा। तब वे इसे नहीं सुनना चाहते हैं। क्यों? वे अंधकार के हैं। वे संप्रदाय को अनुकरण करना चाहते हैं। मैं उतना ही अच्छा हूँ जितने कि आप हैं। वहाँ सच्चाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, कोई भी अच्छा नहीं, यह परमेश्वर है जो अच्छा है, समझे। लेकिन क्या तुम उसे समर्पित करना चाह रहे हो? यही है जिसे मैं चाह रहा हूँ। क्या आप समर्पित करने को तैयार हैं? देखा, यह भूखे प्राण को तृप्त नहीं करता है। ध्यान देना, जब पौलुस, कितने लोग जानते हैं कि वो एक धर्म ज्ञानी था? क्यों? वो एक बौद्धिक दानव था। वो निश्चय उसने गमलील के नीचे शिक्षा को पाया था। उन दिनों की सबसे बड़ी शिक्षा वहाँ पर थी। लेकिन उसने क्या कहा जब वो कलीसिया में आया? दूसरा कुरिन्थियों 2:4 में पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों 2:4 में उसने कहा, मैं तुम्हारे पास लुभाने वाली बातों के साथ नहीं आया हूँ जो इस संसार में मनुष्य का ज्ञान है, क्योंकि यदि मैंने किया है तो तुम्हारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर होगा, संस्थाएं संप्रदाय पर होगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और प्रमाण के साथ आया हूँ। क्या प्रमाण? पवित्र आत्मा के द्वारा चिन्ह और अद्भुत कार्य दिखाते हुए मैं तुम्हारे पास उस तरह से आया हूँ कि तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास उस कलीसियाओं में बड़ी संस्थाओं के ज्ञान पर विश्राम न करे, लेकिन यह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्राम करे। वो अब तक का सबसे बड़ा धर्मशास्त्री था जो कभी हुआ। उसने कहा कि मसीह को पाने के लिए जो भी वो जानता था उसे सब कुछ भूल जाना था, और कहा, मैं बौद्धिक बातों को प्रचार नहीं करता, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से साधारणता को प्रचार करता हूँ, और मैं यही प्रचार करने को आया हूँ। कहा, मैं दूसरे तरीकों से प्रचार कर सकता हूँ, मेरे काम इस तरह से प्रचार नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे यदि हमें लाखों और भी 34, 44 या जो भी ये कह सकते हैं नहीं मिल सकते हैं। उसका प्रचार वाक्य है, हमें इस वर्ष बहुत से सदस्यों को जोड़ना है। उसने कहा, मैं ये कर सकता हूँ जो मेरे पास बहुत समय से था, लेकिन मुझे इसे दूर जाना है। मैं तुम्हारे पास आया हूँ धर्म शास्त्र की लुभाने वाली और फुसलाने वाली बातों के साथ नहीं, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ और प्रमाण के साथ आया हूँ कि तुम्हारा विश्वास पवित्र आत्मा पर तैयार हो और किसी मनुष्य के ज्ञान पर नहीं। ओ प्रभु, परमेश्वर ऐसे ही मनुष्य के लिए देख रहा है। परमेश्वर आज उन मनुष्य के लिए देख रहा है जिसे वो इस तरह से पकड़ सकता है। ज्यादा समय नहीं हुआ, लंदन इंग्लैंड में मैं थोड़ा टहल रहा था, और इंग्लैंड ब्रिटिश टापू है जो बहुत से लोगों से भरा हुआ है। इंग्लैंड में तुम्हें मुश्किल से स्थान मिल सकता है, मुश्किल से, लेकिन जब उन्हें वहाँ पर घर मिला और वे वहाँ बढ़ने लगे, जैसे जर्मनी में और इत्यादि में वे पुराने देश हैं और घिसी हुई जमीनें हैं और उनके पास एक छोटा बगीचा है। जर्मनी और इस तरह के स्थानों में तुम्हें पिछला आंगन कहीं नहीं मिलेगा जिसमें कुछ कटी हुई घास हो और बहुत सारे पेड़ हो। तुम्हें टमाटर और बीन्स और आलू कुछ तो खाने को मिलेगा जो उनके पास है, और जमीनें इतनी ऊपर थी कि वो छोटा सा गोरा योद्धा जो मुझे यहाँ वहाँ लेकर गया, हम सबसे ऊपर पहाड़ी पर गए, भाई बैक्स्टर और मैं और वो लड़का, हम एक ऐसे स्थान पर आए जो बहुत ही खूबसूरत स्थान था। वहाँ पर पेड़ थे और हरी घास थी और सब कुछ था। मैंने सोचा, क्या ही यह सुंदर स्थान नहीं है। मैंने उस गोरे व्यक्ति से कहा, मैंने कहा, श्रीमान, मैं आपसे एक सवाल को पूछना चाहूंगा। मैं आपके टापू को यहाँ इतना ढका हुआ देखता हूँ, यहाँ पर एक विशाल जगह है, बहुत सी एकड़ जमीनें हैं, एक खूबसूरत स्थान जो पेड़ और नदियों के साथ है और इसी तरह से सब कुछ है, तुम इसे क्यों छोड़ रहे हो और कोई भी यहाँ पर घर क्यों नहीं बनाता है? उसने कहा, आदरणीय, मैं ये बताना चाहता हूँ, लगभग 2000 साल पहले यहाँ इंग्लैंड में यहाँ एक काला मेह नामक बुखार आरंभ हुआ था, और ये कहा उनके पास कोई टीका नहीं था और लोग मक्खियों की तरह मर रहे थे। वे गाड़ी चलाने वाले आते, उन्होंने मुझसे कहा, वे दिन और रात आते हैं, वे उन्हें दफना भी न सके थे। वो पादरी लोग यहाँ पर आकर, बस आकर कभी तो एक बार अपने हाथों को उठाते और प्रार्थना करते और वापस चले जाते। उन्होंने यहाँ इस नदी में उन सबको फेंक दिया, वे उन्हें दफना भी न सके। कहा, वे मरते गए और ऐसा ही करते गए, हजारों गुना हजार, बालक, बढ़ते हुए बच्चे, नौजवान और सब जन मर गए, और वे उन्हें ऐसे वहाँ से बाहर लेकर गए और फिर उन्हें ऐसे उठाते और उनके ऊपर मिट्टी को फैला देते जब वो महामारी समाप्त हो गई। और उसने कहा, क्या आप जानते हैं? उसने कहा, उस दिन से आज तक इंग्लिश व्यक्ति ने इतना निश्चय किया है कि वो यहाँ पर अपने बुनियाद को नहीं डालेगा। जहाँ पर एक समय ऐसा हुआ था वो अपनी बुनियाद को इस तरह की बातों पर नहीं डालेगा। वो कभी अपने घर को वहाँ नहीं बनाएगा जहाँ पर इस तरह की मृत्यु हुई हो। और मैं वहाँ थोड़ी देर तक खड़ा रहा और मैंने सोचा, उसे यह बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो इसे नहीं समझ पाएगा। लेकिन कैसे इस संसार में एक व्यक्ति, यदि वो काला में बुखार जो 2000 साल पहले हुआ था, जो जमीन पर गड़ा हुआ है, लेकिन आप अपने लिए इतने संदेहजनक और चिंतित होते हैं, आपको थोड़ा और जीना है और आप चिंतित होते हैं शायद वो काला में का बुखार हो जाएगा। यदि आपने घर को वहाँ बनाया तो फिर आप अपने अनंत मंजिल को उन मनुष्य की बनाई हुई संस्थाओं पर डालेंगे जो सैकड़ों साल पहले मर गए। कुछ धार्मिक विद्यालय कलीसिया के कुछ धार्मिक विद्यालय जो हजारों सालों से उस अलमारी पर रखी हुई है, एक भी बात नहीं, एक भी उनमें से परमेश्वर की हरकत नहीं है, और जो कुछ भी है, और आप अपने नाम को संप्रदाय से चिपकेंगे, और जो कुछ भी ठीक वहाँ पर है, और ऐसे ही जिएंगे। सुनना दोस्तों, तुम ऐसा मत करना। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा, और शत्रु के फाटक इस पर कभी प्रबल नहीं होंगे। जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक तुम में हमेशा ही, संसार के अंत तक। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर एक सच्चाई का परमेश्वर है। केवल एक रीति रिवाज को न लेना, ऐसे ही एक सनसनी को न लेना, एक सच्चे परमेश्वर को लेना। कुछ तो जो परमेश्वर है, सच्चाई का परमेश्वर, जो तुम्हें आश्वासन देता है, जो तुम्हें आशा देता है, यह तुम्हें विश्वास देता है, यह तुम्हें आत्मा देता है, यह तुम्हें चिन्हों को देता है, यह तुम्हें अद्भुत कार्य देता है, यह तुम्हें वैसा ही करता है जैसे इसने मसीह में किया, क्योंकि उसके आने का उद्देश्य यही था, ताकि परमेश्वर को मनुष्य के लिए लाए और परमेश्वर और मनुष्य को एक करे। लेकिन उसने संस्थाओं को लिया और उसे बाहर कर दिया, संप्रदाय को लिया और उसे बाहर कर दिया, और अब हम बाहर बाहर से निकलते हुए यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर एक सच्चा महामार्ग है, और उस महामार्ग में एक मार्ग है। अब आप जो नाजरीन भाई हैं, और आपको यह कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं वो धन्य प्राचीन मार्ग, लेकिन यह महामार्ग नहीं है। यदि आप ध्यान देंगे, कहा वहाँ एक महामार्ग है और एक संयोजक और एक मार्ग है, और वो मार्ग उस महामार्ग में है। सारे मार्ग महामार्ग की ओर नहीं जाते हैं, लेकिन जो कोई भी मार्ग में है वहीं जाता है, समझे। वहाँ एक महामार्ग है, और यशाया 35 पढ़ना, वहाँ एक महामार्ग है और एक मार्ग है, समझे। महामार्ग पर एक मार्ग के मध्य में एक मध्य बिंदु होता है, और जहाँ पर वो रास्ते का मध्य होता है, और जब बारिश आती है वो सारे किनारे के कचरे को साफ कर देती है। और यदि आप देखेंगे, जब एक मनुष्य परिवर्तन होता है, वो अपनी आंखों को सीधे मसीह पर स्थिर करता है। अब यदि आप नहीं देखते हैं, तो जैसे मैंने एक रात प्रचार कर रहा था, जैसे जब याकूब और ऐसा ने जन्म लिया, उन दोनों ने एक पवित्र पिता से और एक पवित्र माता से जन्म लिया था, लेकिन वे दोनों जुड़वा थे। एक शारीरिक मनुष्य था, धर्मी कलीसिया जाता है और अच्छा मनुष्य है, बहुत ही अच्छा। याकूब थोड़ा एक धोखेबाज था, लेकिन उसका मन एक बात पर था, वो जन्म अधिकार उसके लिए सब कुछ था, कोई फर्क नहीं उसे इसे कैसे भी लेना है, क्योंकि बाइबल ने कहा कि वो उस पर नजर रखने के लिए जगत की नींव डालने से पहले ठहराया गया था। और आज वहाँ कुछ लोग हैं, मैं परवाह नहीं करता उन्हें कितनी प्रसिद्धि का इस्तेमाल करना पड़े, उनको कितना भी नुकसान पड़े, या जो भी वे करें, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उन्हें पुराने आचरण के लोग बुलाएं, कोई फर्क नहीं करता कि वे क्या हैं, उनकी आंखें मसीह पर हैं, क्योंकि वे अनंत जीवन के लिए चुने हुए हैं, और वे ठीक वहाँ पर लगाए गए हैं। यदि वे हर चीज को ले लेते हैं, यदि सब कुछ जो उनके पास है ये ले लेते हैं, वे वहाँ लगाए गए हैं। वे दूसरे एक साधारण मनुष्य हैं, वो कलीसिया जाता है और वो बाकी के लोगों के जैसा अच्छा महसूस करता है, घर जाता है। देखा, ये ऐसा का जीवन है, समझे, और वो एक दूसरा याकूब का जीवन है। अब आप वहीं पर हैं, दोनों तरफ अपनी बुनियाद को यीशु मसीह में बोना है। निश्चय करो कि यह उसमें है। आप उसमें कैसे होते हैं? हाथ मिलाने के द्वारा, जल छिड़काने के द्वारा, या कुछ और? क्या? एक आत्मा के द्वारा। पहला कुरिन्थियों 12, हम सब ने एक देह, एक पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया है। उस एक देह में बपतिस्मा लिया है, जहाँ पर उस एक देह में वो 9 आत्मिक दान है और 4 कार्य अधिकार है। उसमें परमेश्वर ने कलीसिया को स्थिर किया है, वे प्रेरित, वे नबी और इत्यादि इस कलीसिया में, इसमें वहाँ दान है, चंगाई, चमत्कार, अन्य भाषाएं बोलना, बुद्धि ज्ञान, ये वो बातें हैं जो चिन्ह है जो विश्वासियों के पीछे जाती है। आप क्यों ग्रहण करते हैं? आप क्यों ग्रहण करते हैं जो मैं इसे समझ नहीं सकता हूँ? लोग उन कुछ पुराने गिरजे संबंधी शोक को क्यों चाहते हैं, जबकि वो चट्टान मधु से भरी हुई है? मैं इसे समझ ही नहीं सकता हूँ। आइए अपने सरों को झुकाएं। क्या आप प्रार्थना में याद करना चाहेंगे, कहते हुए, परमेश्वर मेरे हृदय पर इच्छा को देना, मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूँ। हमारे स्वर्गीय पिता, कभी कभी सभा को होने के बाद मैं सोचता हूँ, क्यों पवित्र आत्मा निरंतर कलीसिया को प्रहार करता है, कैसे वो इसे करता है? फिर भी जो आत्मा से अभिषेकित मनुष्य हैं, वे कभी नहीं कह सकते हैं जो कहना चाहते हैं, उन्हें वही करना होता है जो आत्मा कहने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कि उस प्राचीन बाइबल में सोने को पीटने वाले, वो सोने पीटने वाला सोने को मारता है और सोने को मारता रहता है और इसे पलटी करता है और इसे मारता है, जब तक उस पर के सारे कचरे को निकालने देता है, और वो इसे बहुत देर तक मारता है जब तक वो अपने प्रतिबिंब को उस सोने में नहीं देख लेता है। फिर वो इसे जान लेता है कि यह सोना शुद्ध था। ऐसे ही पवित्र आत्मा कलीसिया को मारता है, इसे पलटी करता है, इसे इसके लिए दोषी ठहराता है, इसे उसके लिए दोषी ठहराता है, जब तक उस गंदगी को निकाल नहीं देता, जब तक उसके लोगों में यीशु मसीह का सच्चा प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है, जिससे उनके पास वही जीवन हो, वही चिन्ह उन्हीं चमत्कारों को करते हुए जो उसने किए, वो लोगों में पवित्र आत्मा का प्रतिबिंब होता है। परमेश्वर, मेरे कंगाल हृदय को ले, मुझे मारिए, मुझे घुमाइए, जो भी आप करना चाहते हैं प्रभु, लेकिन मुझे यीशु को प्रतिबिंब होने दीजिए, मुझे उसे प्रतिबिंब करने दीजिए प्रभु। सारे लोग जो यहाँ पर हैं, होने दे प्रभु, हम सब आपको प्रतिबिंब करें, आपका प्रेमी जीवन, आपका पिता के लिए आज्ञा करी रहना। हमने अभी उन्हें बताया है कि आप अपनी प्रसिद्धि के लिए नीचे आ गए, जब आप बीमारों को चंगाई देने के लिए गए, निश्चय ही आप महान थे, लोग आपको देखने आते थे, लेकिन ये क्या था, रोटियां और मछली। और जब आपने उन्हें वचन की सच्चाई बताई, वे उस पर चलने की इच्छा नहीं रख रहे थे, तब आपकी प्रसिद्धि निरंतर कम होती गई। आपने चमत्कारों को जारी रखा, लेकिन आपकी प्रसिद्धि कम हो गई। आप एक सच्चाई के परमेश्वर हैं, आप हमेशा से ही ऐसे रहे हैं, आप नहीं बदले हैं। मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि कलीसिया और सारे लोग जो यहां पर हैं, अपने हाथों को उठाया है, उन्हें आज का एक दर्शन मिलेगा, वे देख नहीं पाएंगे प्रभु की यह मनुष्य नहीं है। यदि हम मनुष्य के पीछे जाते हैं तब हम दुखित होते हैं, लेकिन यदि हम पवित्र आत्मा के पीछे जाते हैं, वो हमें बाइबल की हर एक प्रतिज्ञा की ओर अगुवाई करेगा, होने पाए हर एक चीज आज यहाँ लोगों के अंदर पूरी हो जाए। मैं बालकों के छोटे कपड़ों, जैकेट, रुमाल, पार्सल को हाथों में पकड़े हुए हूँ। हमें बाइबल में सिखाया गया है कि उन्होंने पौलुस की देह से रुमाल और कपड़ों को लिया और अशुद्ध आत्माएं लोगों से निकल गई और बीमारियों से चंगाई पाई। आज लोग अब भी उसी परमेश्वर को देखते हैं। अब हम जानते हैं हम संत पौलुस नहीं है, लेकिन आप अब भी वही यीशु हैं, और यह संत पौलुस नहीं है, यह संत पौलुस था जिसने यीशु मसीह को जीवन समर्पित किया था। प्रभु ने विशेष चमत्कारों को दिखाया, वो पौलुस नहीं, वो प्रभु था। अपिता परमेश्वर, हम विश्वास कर रहे हैं कि हम एक बात को नहीं जानते, बहुत सी बार निंदा हुई है, पांव को धोना, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, स्त्री प्रचारकों को मना करना, प्राण के अनंत सुरक्षा पर विश्वास करना, जैसे पौलुस ने सिखाया, एफिसियों को बताया, वे परमेश्वर के पुत्र और कन्या होने के लिए जगत के नींव डालने से पहले ठहराए गए हैं, कुरिन्थियों को बताया, परमेश्वर ने ऐसा उसे घृणा की और याकूब से प्रेम किया, उनके जन्म होने से पहले, उनके सही और गलत जानने का मौका हो उससे पहले, क्योंकि वो पहले से ठहराया गया, उसके पूर्व ज्ञान ने उसे बताया था। और पिता, वे वहाँ पर इस तरह की चीजों पर क्यों छूट गए हैं, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, चिन्ह और अद्भुत कार्य जिसकी आपने प्रतिज्ञा की है, बाइबल कहता है आप कल, आज और युगानुयुग एक सा हैं। पिता, हमारा कुछ और ही मतलब नहीं होगा, लेकिन हम आपके सेवक होने के लिए हमें आपके वचन का अनुकरण करना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप लोगों को दिखाएंगे कि ये कुछ अलग नहीं होगा, यह स्वार्थ नहीं होगा, यहाँ कोई तो कोशिश नहीं करेगा कि हम कुछ नहीं है, हम केवल आपके वचन को थामने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक जन इसे देखने पाए पिता। और जैसे मैं इन कपड़ों को बीमारों को भेजता हूँ, होने पाए उसमें से हर एक जन चंगाई को पाए प्रभु, होने पाए आपका पवित्र आत्मा विश्वास के प्रमाण को देखे और वे जाकर और चंगाई को पाए, इसे ग्रहण करे प्रभु। भाई नेविल को आशीष दे, कलीसिया को आशीष दे, एक साथ रविवार की पाठशाला को आशीष दे, और शिक्षकों को, यहाँ सारे पास्टरों को आशीष दे, हमारे द्वार पर मेहमानों को आशीष दे प्रभु, मेरी सहायता करना, मुझे अब गाड़ी को तेज चलाना होगा, वहाँ उस टूटे हुए हृदय परिवार को सांत्वना देने की कोशिश करें, 150 मील या ज्यादा जो वहाँ पर उस देश में है, उधर पहुँचने के लिए थोड़ा ही समय है, मेरे साथ होना प्रभु, मेरी सहायता करना। और होने पाए कभी मैं कभी उस व्यक्ति से ऐसे बात न करूं जो विचलित हो, जब तक उन्हें आपको स्वीकार करने का मौका नहीं मिलता जो वहां पर खड़े हैं। परमेश्वर उन्हें ग्रहण करें, उन बहुत से दीन केंटकी के लोगों को उस वेदी पर नम्रता से चलकर आते हैं आज दोपहर उस मेथोडिस्ट कलीसिया में, और अपने हृदय को आपको देते हैं, इसे ग्रहण करें प्रभु, उन पर अब दया करें, हम सबको एक साथ आशीष दें, बीमारों को चंगा करें, खोए हुए को बचाएं, हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं भाई नेविल से पूछूंगा कुछ मिनटों के लिए, अब सभा को जारी रखने के लिए ले लें, और मैं नहीं जानता वो इस समय क्या करने जा रहे हैं, और आप सब मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, परमेश्वर आपको आशीष दे, भाई नेविल।